बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा जी, जस्ट अ लिटिल रीकैप। मैं चाहता हूँ कि छोटा सा एक रीकैप करने कि इस वक्त हम अपनी वर्कशॉप के अंदर जो असेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, जिसको कि हम समझते हैं कि थ्रू आउट द प्रोसेस लोगों को जिनका ख्याल रखना है वो कर रहे हैं, और इसके बाद फिर हम अपने असल वर्कशॉप के टॉपिक्स पर आएंगे। ये आज हमारा 12वां सेशन है, और आज जिस टॉपिक पर हमारा बात करने का प्रोग्राम है वो है आवर मोटिव टू डू द राइट थिंग। मैं पहले आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ जी, सो दैट ये सामने रहे। कोशिश यही होगी जी कि जिस तरह से नॉर्मली हम करते हैं कि ब्रीफली टॉपिक को डिस्कस करके तो फिर सवाल जवाब के लिए इंशाल्लाह हाजिर हैं। ये जो मोटिव है, इसको पहले तो ये समझ लें कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है। इंसान जब भी जिंदगी में अच्छे फैसले करना चाहता है और वो ये चाहता है कि मैं सही रास्ते पर रहूं, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। आपको आम हालात में देर इज नो रीजन कि आप झूठ बोलेंगे, देर इज नो रीजन एट ऑल कि आप किसी के साथ गलत बयानी करेंगे, लेकिन ये कि अगर उसमें फायदा नजर आ रहा है या आप किसी नुकसान से अपने आप को बचाना चाह रहे हैं, तो ये पॉसिबल है कि उस मौके पर हम गलत बयानी कर दें, झूठ बोल दें, कोई ऐसी बात कर दें जो फैक्ट्स के खिलाफ है। इस तरह की सिचुएशन में अगर आपके पास एक बड़ा मोटिव नहीं है ठीक रास्ते पर कायम रहने का, तो इसका इम्कान है कि आपके लिए ये मुश्किल हो जाएगा कि आप ठीक रास्ते पर रह सकें। हम ये जो टॉपिक है इसको दो हिस्सों में हमने डिवाइड किया हुआ है जी। एक हिस्सा हम आज करेंगे विच इज अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन, कि जिस तरह से साइकोलॉजी में ये देखा गया है कि इंसान जैसे जैसे अपनी जिंदगी में डेवलप करता है तो उसके मोटिव्स में किस तरह से चेंज आती है। यानी हम सभी, आप जब इन चीजों को, इन आज का जो टॉपिक है बहुत ब्रीफली है उसको जब देखेंगे, तो अगर अपने ऊपर गौर करें इंट्रोस्पेक्शन के साथ, आप ये जान सकते हैं कि आप इन स्टेजेस से गुजरे हुए हैं। ये कोई आपके लिए कोई अनयूजुअल चीज नहीं है जो कि आपके सामने आएगी, लेकिन अक्सर औकात हम इस तरह की अनयूजुअल चीजों को भी बहुत ज्यादा नोटिस नहीं करते। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि नंबर एक जो इसमें इशू है वो ये है, और ये इस वजह से हमारे असेंशियल टॉपिक्स में है। असेंशियल टॉपिक्स का मतलब ये होता है कि हम अपनी वर्कशॉप्स जो भी कर रही हैं, व्हाटएवर टॉपिक जो है वो, चाहे वो पॉजिटिविटी का है, चाहे वो लिविंग अ प्रिंसिपल सेंटर्ड लाइफ का है, खा वो इंटरेक्शंस अच्छे करने का है, रिलेशनशिप्स को के अंदर अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशंस करने का है, दूसरों के इंटरेक्शंस के तरीकों को, प्रिंसिपल्स को समझने का है, या मिसाल के तौर पर पेरेंटिंग का है। हम इस इन सारे ही टॉपिक्स में ये कोशिश करते हैं कि इसको एक असेंशियल एलिमेंट बनाएं, बिकॉज ये सारे टॉपिक्स असल में आपको ये बताते हैं कि आपको उन मौकों पर कि जिसमें इंसान गलती कर जाता है उसमें ठीक रहने के लिए एक बड़ा स्ट्रांग रीजन चाहिए ठीक रहने का। वो रीजन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन जिस तरह मैंने अर्ज किया ये टॉपिक दो हिस्सों में डिवाइडेड है। आज का हिस्सा जो है वो हम इस बात पे बात करेंगे कि आमतौर पर इंसान जब पैदा होता है और उसके बाद शऊर की उम्र को पहुंचता है, आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है, तो उसके रीजन में किस तरह से नेचुरली तब्दीली आती है। और अगले टॉपिक में मैं अपने हवाले से आपके साथ ये शेयर करूंगा कि किस तरह से हमारा फेथ जो है, हमारा ईमान जो है, वो इसमें किस तरह मददगार हो सकता है। ये दो टॉपिक्स हैं, लेकिन एक चीज और मैंने आपसे गुजारिश करनी है कि नेक्स्ट वीक मेरे अपनी एक मसरूफियत के बायस एक वर्कशॉप जो मैंने खुद अटेंड करनी है जी, एक टॉपिक को मैं ज्यादा बेहतर जानना चाह रहा हूँ उसके हवाले से मुझे आई विल हैव टू स्किप। तो हमारा नेक्स्ट वीक ये मीटिंग नहीं होगी हमारी, ये वाला जो इस वक्त हम मिल रहे हैं, इससे अगले हफ्ते में यानी 7th को जो फ्राइडे आ रहा है उसमें वी विल नॉट मीट हेयर, हमारा ये सेशन नहीं हो सकेगा। हमारी नेक्स्ट मीटिंग जो है वो 14th होगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये आज के, बल्कि सबसे इम्पोर्टेंट नहीं, वाहिद एस्पेक्ट ये है कि हमारे पॉसिबल मोटिव्स टू डू राइट और रॉन्ग ये किस तरह से प्रोग्रेस करते हैं जिंदगी में। हमारी जिंदगियों में जब आगाज होता है तो हम एक जगह पे खड़े होते हैं, हमारी एक खास मीनिंग मेकिंग, एक खास तरह से हम चीजों को कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। ये कंस्ट्रक्शन जो है ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज होती रहती है, और ये जो चेंज है ये बेसिकली मेंटल और कॉग्निटिव और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के बायस हो रहा होता है। तो मैंने गुजारिश की है कि पीपल कैन हैव डिफरेंट मोटिव्स टू डू द राइट थिंग। इंसानों के यहाँ मुख्तलिफ मुहर्रकात हो सकते हैं सही या गलत करने के लिए, ईदर वेज वो आपकी नज़र में हो सकता है गलत कर रहा हो, लेकिन वो जिस तरह भी देख रहा है चीज़ों को उसके मुहर्रकात हैं एक। और ये जो मुहर्रकात हैं ये जनरली जनरली इवॉल्व करते हैं जैसा कि लोगों की कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी इवॉल्व करती है। ये जो कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी है, यानी यूं समझ लीजिए कि आपने एक चीज को देखा है और उसको अपने जहन में एक खास तरह से परसीव किया है। ये जो परसीव करने का प्रोसेस है, आप किस तरह उसको परसीव कर रहे हैं, मैंने इसकी मिसाल दी थी कुछ दिन पहले कि आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए कि आप एक कमरे में दाखिल हुए हैं, थोड़ा सा अंधेरा है और उधर एक कॉयल की सूरत में तार बिछा हुआ है, यानी वो लपेट कर किसी ने साइड पे रखा हुआ है, और आप उस कॉयल को देखकर तो आपकी परसेप्शन ये है, आपकी कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट फैक्ट, वहां पर जो कुछ भी है आपने उसको कंस्ट्रक्ट इस तरह से किया है कि ये सांप है। तो अगर ये कंस्ट्रक्शन है तो इसके नतीजे में आपका रिएक्शन कुछ और होगा। लाइट जला दी जाए और उसके नतीजे में आपके ऊपर ये बात आया हो जाए कि ये सांप नहीं बल्कि तार है, तो फौरन जो इमोशन आपके अंदर पैदा हुई होगी वो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह हमारा मामला जो है वो इंसानों के साथ मामला करते हुए पेश आ सकता है। यानी आप एक चीज, एक इशू को कंस्ट्रक्ट करेंगे और कंस्ट्रक्शन के बाद आप ये समझते हैं कि अगर हमने जिस तरह से इसको कंस्ट्रक्ट किया है उस तरह से अगर लिया जाए तो इसमें आपके लिए वो गुस्से का बायस बन रही है, आपको उससे परेशानी हो रही है या आपको इरिटेशन हो रही है या फ्रस्ट्रेशन हो रही है, लेकिन अगर वो कंस्ट्रक्शन चेंज हो जाए तो उसके नतीजे में वो नहीं होगा। तो ये जनरली ये जो मोटिव्स हैं इंसान के, ये हमारी कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, इसकी भी अपनी लिमिट्स होती हैं जी। ये भी आगे चल के जिस वक्त के टाइम आएगा अल्लाह ने अगर मौका दिया तो मैं आपके साथ इंसानों की जो जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं उनके ऊपर जब बात करूंगा तो ये ज्यादा तफसील से होगी बात कि उसमें हम रियलिटी को कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। तो ये जो मोटिव्स हैं ये इवॉल्व करते हैं इंसान की कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी के साथ, उनकी मीनिंग मेकिंग के साथ। जैसे जैसे वो ग्रो करती है वैसे वैसे इंसान की ये जो ये मोटिव्स हैं ये भी चेंज होते हैं, एंड दिस डेवलप्स एज पीपल ग्रो साइकोलॉजिकली कॉग्निटिवली एंड इमोशनली। साइकोलॉजिकल तो आप जानते हैं नफसियाती तौर पर, कॉग्निटिव का मतलब होता है कि उनकी समझ के लिहाज से कैसे वो चीज़ों को समझ रहे हैं, और इमोशनली जाहिर है कि जज्बाती जो मेच्योरिटी है जैसे जैसे वो पैदा होती है। दिस प्रोग्रेशन इज जनरली एज अंडर, इसको जहन में रखिए कि साइकोलॉजिस्ट का ये ख्याल है कि ये एक खास तरीके से प्रोग्रेस करती है, यानी ये मोटिव जो है ये एक खास तरीके से आगे बढ़ रहे होते हैं। इसमें मेरी राय ये नहीं है कि लाजमन हर स्टेज आती है, लेकिन बहरहाल दिस इज वॉट डिवेलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट से। अच्छा जी, द फर्स्ट थिंग, द फर्स्ट स्टेज इज वेयर टू गेट द अप्रूवल ऑफ अथॉरिटी, आपके आप जिसको भी अथॉरिटी फिगर समझते हैं उसकी अप्रूवल लेने के लिए, इसमें कौन शामिल हो सकते हैं, बिल्कुल बचपन में गौर कीजिए तो पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, एल्डर्स हो सकते हैं, उनकी अप्रूवल लेने के लिए एंड टू अवॉइड द डिसअप्रूवल ऑफ अथॉरिटी, कि उनकी जो डिसअप्रूवल है वो अवॉइड करने के लिए। ये जो स्टेज होती है इसमें इंसान की असल जरूरत ये होती है कि उसकी नीड पूरी हो, और जो नीड पूरी कर सकता है असल में उसको उसने खुश करना है, और उसको ना खुश करने से उसको रोकना है अपने आप को। एट दिस स्टेज द सेटिस्फेक्शन ऑफ वन्स नीड्स कंसिडर्ड डिपेंडेंट ऑन द अथॉरिटी फिगर्स अप्रूवल इज द ड्राइविंग फोर्स। यानी इसको फिर से समझ लीजिए, इस स्टेज में जो इंसान की जरूरत है वो जरूरत ख्वाहिश भी हो सकती है, वो जरूरत ये भी हो सकती है कि मैं जो चाहता हूं मुझे मिल जाए, और वो चूंकि डिपेंडेंट है अथॉरिटी फिगर्स के ऊपर लिहाजा वो ड्राइविंग फोर्स होती है कि अथॉरिटी फिगर्स की अप्रूवल, उनको खुश करना है। ये अथॉरिटी फिगर्स बिलमूम इंसान के बचपन में बड़े लिमिटेड होते हैं, यानी व्हेन आई से लिमिटेड होते हैं, ये जरूरी नहीं कि एक ही हो, इट कैन बी योर केयर टेकर्स, इट कैन बी योर पेरेंट्स, इट कैन बी द टीचर्स, एल्डर्स, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन होते लिमिटेड हैं, यानी उनकी दी हुई वैल्यूज के ऊपर आप खड़े होते हैं। आमतौर पर ये बहुत ज्यादा समझ के नहीं खड़े होते, मकसद ये नहीं होता कि हमने ये समझ लिया है कि ये बात ठीक है और ये बात गलत है, बल्कि ये होता है कि अगर हमने ये बात कही तो हमें इनाम मिलेगा या हमारी नीड पूरी होगी, और अगर ये ना कही तो इसके नतीजे में प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती है मेरे लिए। यही वजह है कि जिस वक्त आप बच्चों को कोई ऐसी ऐसे फैक्ट्स सिखा देते हैं कि जिनको उनको इस मौके पर जिंदगी में समझना पॉसिबल नहीं होता, तो वो उसको बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं करते, वो जो अप्रूवल है टीचर की उसी को लेने के लिए वो आपको सही जवाब देने की कोशिश करेगा। इसके बाद अगली एक स्टेज आती है कि जिसमें आपका जो इन्फ्लुएंस का सर्कल है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है, यानी वो लोग जो आपके ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वो ग्रुप बड़ा होना शुरू हो जाता है। इस स्टेज पर टू अबाइड बाय द नॉर्म्स एंड कस्टम्स ऑफ द ग्रुप वन एस्क्राइब्स टू, आपकी फैमिली, आपके पेयर्स, आपके सोशल ग्रुप, आपका ट्राइब, आपकी नेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे इसमें शामिल हो जाते हैं। यानी मैंने वो करना है कि जो मेरी मेरी बरादरी ठीक समझती है, मैंने वो करना है जो मेरा सोशल ग्रुप ठीक समझता है, वो ट्राइब मेरा या मेरी नेशन, मैं ये समझता हूँ कि ये जो एक वैल्यू है जिसको आप कहते हैं लॉयल्टी, या स्पेशली फ्रॉम अ नेशनल पर्सपेक्टिव कि मुझे अपने मुल्क का वफादार होना चाहिए, ये उनमें से एक वैल्यू है जी, यानी टू अबाइड बाय द नॉर्म्स एंड कस्टम्स ऑफ द ग्रुप वन एस्क्राइब्स टू। जब मैं व्हेन आई से कि वफादार होना चाहिए, जाहिर है कि मुझे हर एक का ही वफादार होना चाहिए, मुझे हर एक का खैर खा होना चाहिए, लेकिन ये बात कि वॉट एवर माई कंट्री सेज या जो कुछ मेरे मुल्क के फायदे में है मैंने उसका साथ देना है, ये असल में एक हीनोथियस्टिक बिलीफ है, ठीक है जी। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम इस स्टेज से जब गुजरते हैं तो हम इसको ये समझते हैं, हम इसको यही समझ रहे होते हैं कि ये ठीक वैल्यू है, ये ठीक बात है जो हम कर रहे हैं। पहली स्टेज पर एक चीज पे बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है जी, पहली स्टेज पे इंसान के अंदर जो फीलिंग्स ऑफ गिल्ट पैदा होती हैं वो इससे नहीं पैदा होती कि मैंने गलत किया है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको बड़ी अच्छी तरह समझ लें। ये आपके ऊपर ये टाइम गुजर चुका है, एंड इफ यू लुक बैक तो आप ये रियलाइज करेंगे कि ऐसा हुआ था। पहली स्टेज पर जो फीलिंग्स ऑफ गिल्ट पैदा होती हैं वो इससे नहीं पैदा होती हैं कि मैंने गलत किया है, वो इससे पैदा होती हैं कि जिसके खिलाफ गलत किया है कहीं उसको पता ना चल जाए। मिसाल के तौर पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैंने वो किया जो मेरी वालदा ने मना किया था, इससे नहीं गिल्ट पैदा हो रहा, पैदा इससे हो रहा है कि कहीं मेरी वालदा को मालूम ना हो जाए, व्हाट विल आई डू अबाउट इट इफ माय मदर फाइंड्स आउट अबाउट इट। तो ये गिल्ट की भी बिल्कुल नई सूरत बन जाती है, गिल्ट यहां से नहीं पैदा हो रहा कि गलती हुई है या सही किया है तो उससे आपकी कॉन्शियंस जो है वो आपको शाबाशी देगी। प्रॉब्लम हो सकता है आपको बिल्कुल समझ में ना आए कि ये मैंने क्यों, मुझे ये कहा गया है कि तुमने ये कुकी नहीं खानी, लेकिन अगर खा ली है तो अब मसला ये है कि वालदा को पता चल जाएगा, इससे मेरे अंदर गिल्ट पैदा हो रहा है। और दूसरी स्टेज पर जो गिल्ट पैदा होता है वो ये पैदा होता है कि मैंने अपनी अपने ग्रुप की अप्रूवल के खिलाफ कोई काम कर दिया, यानी वो जो मेरे मेरा ग्रुप जिस चीज को वैल्यू करता है मैंने उसके खिलाफ खड़े होकर तो मामला कर दिया है, और अगर ये पता चल गया तो मुझे अपने ग्रुप की अप्रूवल या हो सकता है उससे डिस्कार्ड ही कर दिया जाए, मुझे मुझे निकाल ही दिया जाए। तो यहां पर जो स्टेज है, इस स्टेज पर, एट दिस स्टेज द इमोशनल सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम द रिकग्निशन एंड अप्रूवल ऑफ द ग्रुप वन वैल्यूज इज द ड्राइविंग फोर्स। यहां पर जो मोटिव है वो ये इमोशनल सेटिस्फेक्शन है कि मुझे ये मिले कि जिसमें लोग जो हैं वो मेरे से खुश हों। यहाँ पर बड़ा बड़ा काम कर जाता है आदमी इस स्टेज पे। यहाँ पर देखिए ये जो चीज है ये उन लोगों में बहुत ज्यादा होती है, और हम सब, मैं इससे अर्ज करता हूँ कि हम सब इस स्टेज से गुजर चुके हैं कि जिसमें हमें मसला ये नहीं होता कि बात ठीक क्या या गलत क्या है, मसला ये होता है कि लोग क्या कहेंगे, व्हाट विल पीपल से अबाउट इट, और फिर जब लोग कहेंगे और आके बातें करेंगे तो उससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा, ये वाला एस्पेक्ट जो है ये गालिब होता है हमारे कामों में। और तीसरी वो स्टेज है कि जिधर टू गेट द सेटिस्फेक्शन ऑफ लिविंग अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स, यहां पर उसूल आ गए आप, यहां पर ये प्रॉब्लम नहीं है। और वो उसूल जनरली वो है कि जिनको आपने खुद अपने उसूलों के तौर पर अपनी जिंदगी में अडॉप्ट करने का फैसला किया है। टू गेट द सेटिस्फेक्शन ऑफ लिविंग अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स द इंडिविजुअल पर्सनली होल्ड्स टू बी एक्यूरेट, वो जाती तौर पर मैं ये समझता हूं कि ये प्रिंसिपल ठीक है, सच्चाई ठीक है। अब वो सच्चाई खा मेरे वालिदैन के खिलाफ जाए, मेरे मुल्क मेरी कौम के खिलाफ जाए, मेरे दुश्मनों के फेवर में जाए, मुझे सच बोलना चाहिए, ये जो एस्पेक्ट है ये अब मेरे लिए मोटिवेटिंग फोर्स होती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर अदर्स अप्रूव ऑफ देम और नॉट। ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरों को ये कैसा लगेगा, वो इससे खुश होंगे ना खुश होंगे, ये बिल्कुल सेकेंडरी हो जाती है बात। लेकिन असल चीज क्या बन जाती है कि मैं किन उसूलों को रिकग्नाइज करता हूं अपनी जिंदगी में, किन उसूलों को ओन करता हूं और मुझे उन उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए। एट दिस स्टेज द इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल सेटिस्फेक्शन ऑफ लिविंग अ लाइफ अकॉर्डिंग टू वन्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट एंड रॉन्ग इज द ड्राइविंग फोर्स। यहां पर अब ये एक पर्सनल ड्राइविंग फोर्स है मेरी, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि कौन दूसरे के क्या क्या, क्या राय रखते हैं क्या नहीं रखते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट फॉर इंस्टेंस कि मुझे दूसरों के बारे में कंपैशनेट होना चाहिए, मुझे अपने अपने टैक्स रिटर्न्स देते हुए सच्चाई के साथ मामला करना चाहिए, मुझे हर उस मौके पर कि जिधर मुझे नुकसान उठाना पड़ सकता है मुझे आई हैव टू डू व्हाट इज राइट। मेरे साथ कई दफा लोगों ने ये बात करते हुए कहा कि सवाल ये है कि हमें जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए एट नेशनल लेवल वो अगर नहीं मिल रही है तो व्हाई शुड वी बी ऑनेस्ट अबाउट पेइंग टैक्सेस। इसमें असल बात यह है कि वो उनका प्रिंसिपल में कमजोरी हो सकती है लेकिन मेरा प्रिंसिपल क्या है और मेरे प्रिंसिपल पर खड़े होने में जो मुझे पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलती है यही वो चीज है जो मुझे राइट और रॉन्ग की तरफ लेकर जाती है। यहां पर जाहिर है कि ये जो स्टेज आती है ये जिंदगी में उस वक्त आती है कि जिस वक्त इंसान की कॉन्शियंस जो है ये जो प्रिंसिपल्स हैं इनको ड्राइव करने में भी जिस तरह हम आगे चलेंगे और इस पर तफसील से बात करेंगे ये जनरली यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स होते हैं। ये वो प्रिंसिपल्स नहीं होते विच आर रिस्ट्रिक्टेड टू फॉर इंस्टेंस अ पर्टिकुलर रिलीजन और अ पर्टिकुलर पर्टिकुलर नेशन और अ पर्टिकुलर ट्राइब। ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो मेरे अंदर भी हैं आपके अंदर भी हैं, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस मुल्क में पैदा हुआ हूँ किस सोसाइटी में रहा हूँ किन लोगों के साथ रहा हूँ और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ मामला किस किस बैकग्राउंड आप ही क्या है और क्या नहीं। ये वो प्रिंसिपल हैं कि जिधर हम सब इंसान बहैसियत इंसान के एग्री करते हैं और यही वो प्रिंसिपल हैं कि जिनके बारे में हम ये समझते हैं कि ये अल्लाह ताला के वदियत करदा प्रिंसिपल हैं। वदियत करदा का मतलब है कि ये बराह रास्त इंसान को बहैसियत इंसान इंडिविजुअली वही की गई है, यानी जिसको कुरान मजीद ने जब बयान किया तो ये कहा कि फअल हमाहा फुजूरहा वतक्वाहा कि उसको इसकी अच्छाई और बुराई उसके अंदर इल्हाम कर दी गई है। ये तीन मेजर स्टेजेस हैं जी जिसकी जो आती हैं। एक इसके बाद एक चौथी स्टेज भी है लेकिन वो प्राइमरली इसमें मोटिव नहीं है, मैं उसको इस वजह से इसमें शामिल नहीं कर रहा हूँ। यानी वो बेसिकली ये है कि डिसीजन किस तरह लिया जाएगा सही और गलत का एट टाइम्स। फॉर इंस्टेंस मैं एक प्रिंसिपल सेंटर्ड आदमी हूँ तो और अगर आप वो प्रिंसिपल या आप एक प्रिंसिपल सेंटर्ड आदमी और मैं वो प्रिंसिपल तोड़ रहा हूँ तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आप ये डिसाइड कर दें और बगैर किसी प्रॉब्लम के ये जजमेंट पास कर दें कि ये गलत कर रहे हैं। लेकिन एक चौथी स्टेज वो आती है कि जिधर इंसान ये कहता है कि नहीं मुझे उसको समझना है पहले कि वो कर कैसे रहा है उसकी कंस्ट्रक्शन है क्या। इसको कहते हैं जी ये जो फोर्थ स्टेज है वो इस हवाले से बिल्कुल एक यूनिक स्टेज है कि जिसमें इंसान बिल्कुल ठीक प्रिंसिपल पे खड़ा है खुद लेकिन दूसरों के बारे में जजमेंट देने से पहले वो ये चाहता है कि मैं ये समझ लूं कि दूसरा उस सिचुएशन को देख कैसे रहा है। बट बिकॉज दैट इज नॉट अ मोटिव दैट इज एन अंडरस्टैंडिंग जो हम दूसरों को दे सकते हैं दैट इज बीइंग मोर एम्पैथिक एम्पथी के साथ उसका ताल्लुक है कि बजाय इसके कि मैं अपने स्टैंड पॉइंट से दूसरों को जज करूं मैं ये देखूं कि दूसरा असल में जिस स्टैंड पॉइंट पे खड़ा है वो जिंदगी को कैसे देख रहा है बजाय इसके कि उसका मजाक उड़ा दूं कि तुम एक रोल हुई भी तार से डर गए हो मैं ये समझूं कि अगर मैंने भी उसको सांप समझा होता तो मैं भी डर जाता। वो जो कंस्ट्रक्शन है, अगर उसकी कंस्ट्रक्शन मेरी होती तो फिर क्या होता। ये वाला एस्पेक्ट वो फोर्थ स्टेज पे आता है, बट दैट इज बिकॉज इट इज नॉट अ मोटिव, तो हम उसको यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। ये जो तीनों स्टेजेस हैं, अगर आप गौर करेंगे तो आप ये भी जान लेंगे कि आप इन स्टेजेस में से जो गुजर चुकी हैं उनको भी पॉइंट आउट कर सकते हैं कि हाँ, एक टाइम था कि जब मैं इस तरह से देख रहा था जिंदगी को। अक्सर लोग जो हैं हमारे, यानी रिसर्च ये बताती है कि अक्सर लोग जो हैं वो ऑलमोस्ट पूरी जिंदगी ही सेकंड स्टेज पे गुजार देते हैं, जिधर उनको जो असल प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि मेरे एक्शन के बारे में दूसरों की राय क्या है। ये वाला एस्पेक्ट जो है, ये इस तरफ मजीद आपको मोटिवेट करे कि हमको असल में इसको जानने की कोशिश करनी है कि हम अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है और अपना जो हमारा हमारी जो कंस्ट्रक्शन है उसको इस तरह से ठीक कर लें कि जिसके नतीजे में हम एक डेवलपमेंटल स्टेज में अपनी आखिरी स्टेज पे पहुंच सकें एक बहैसियत इंसान के। मेरा आज का जो टॉपिक है जी, वो इतना ही था। आई थिंक वी हैव अबाउट एन आवर फॉर क्वेश्चंस। अगर किसी को कोई सवाल हो तो मैं हाजिर हूँ, वरना यहाँ पे बात खत्म हो जाती है जी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, वो कह रहे हैं जी कि हाउ टू पोलाइटली से नो टू पीपल हु हैव हाई एक्सपेक्टेशंस ऑफ अस, लाइक एनी सिबलिंग आस्किंग हेल्प विद हिज हर होमवर्क एटसेट्रा। हाउ कैन वी से नो टू देम विदाउट हर्टिंग देयर फीलिंग्स? आई थिंक इफ यू रियली नीड टू से टू देम, यू नो, यू नीड टू से नो टू देम, देयर मस्ट बी अ रीजन फॉर दैट। यकीनन कोई वजह होगी। अगर तो वजह ये है कि आप समझते हैं कि ये इस तरह से हेल्प करना जो है वो नुकसानदेह हो जाएगा, तो ये वजह भी बयान कर सकते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आपका इस वक्त कुछ ऐसा, यू नो, यू हैव टू टेक केयर ऑफ समथिंग, तो असल में प्रॉब्लम जिधर से पैदा होती है वो ये यहाँ से पैदा होती है कि हम ये बहुत सारी चीजें अज्यूम कर रहे होते हैं। यानी अगर मैं ये एक्सपेक्टेशंस मैंने डेवलप कर दी हैं कि मुझे असल में सही या गलत दूसरे की मदद करनी है, तो ये वो चीज है कि जिससे मुझे आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को भी और दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को भी निकालना है। और जब तक मैं ये नहीं निकालूंगा, दूसरों की फीलिंग जो है वो यही रहेगी कि इसको मेरी मदद करनी चाहिए। मैं आमतौर पर अगर वो मेरे से मदद मांगता है होमवर्क करने में, तो मैं उनसे ये कहता हूँ, अपनी औलाद से भी कहता हूँ, और वो कई दफा बड़े होते हैं कि टाइम बहुत कम है और अब तो इतनी मेहनत नहीं हो सकती। मैं उनसे ये कहता हूँ कि आप एक काम करें, आप पहले ये करके दिखाएं मुझे, एंड लेट्स देन डिस्कस इट। ठीक है जी। जनरली होता क्यों है ये, इसको भी समझना चाहिए। आमतौर पर हम टाइम नहीं मैनेज कर रहे होते। वी आर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू वॉट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस, वी आर ओनली वर्किंग अकॉर्डिंग टू वॉट इज अर्जेंट जिंदगी में। और ये जिस तरह से दूसरों पर अप्लाई होता है, ये हम मुझ पर और आप पर भी अप्लाई होता है। इसको हमें ठीक करने की जरूरत है। हाउ डू वी मैनेज टाइम इन आवर लाइफ? ठीक है जी। हम जो टाइम, अब आप इसको इस तरह से इमेजिन करें कि अगर आपको कोई असाइनमेंट मिली हुई है, तो उस असाइनमेंट को आप उस टाइम तक पोस्टपोन कर देंगे जब आपको अब करनी पड़ जाएगी। यानी यू डोंट हैव एन ऑप्शन, अब तो करनी पड़ेगी ये मेहनत। इसी तरह से मुझे याद है कि हम अपने MBA में भी ये कर दिया करते थे कि एक असाइनमेंट है जिसके लिए अभी 2 महीने हैं, तो आखिरी जब 10 दिन, 5 दिन, 4 दिन रह जाते थे, तो उस वक्त बैठ के तो धड़ाधड़ काम शुरू हो जाता था। वाई डज दिस हैपन? बिकॉज वी आर ड्रिवन बाई अर्जेंसी। ठीक है जी। इसको ठीक कर लेना चाहिए और दूसरों को भी ये सिखाना चाहिए। टेल देम वेरी पोलाइटली दैट यू नो दिस इज समथिंग दैट विल हर्ट यू, और अगर ये काम नहीं किया तो वी शुड बी विलिंग टू पे द प्राइस फॉर इट, और वट एवर दैट प्राइस इज। और इसमें अगर मैंने हेल्प कर दी आपकी, तो इसका नुकसान आपको होगा। सो द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज टू लर्न, और जो गलतियां भी होती हैं उसको हम डिस्कस करके मैं उसमें आपकी हेल्प करूंगा करूंगी जो भी, कि हम उसको ठीक करें इंशाल्लाह। बट आई थिंक ये बात आपकी ठीक है, वी शुड ट्राई टू पोलाइटली से नो, और इसमें कोई हर्ज नहीं थी। आई थिंक हर्ट होंगे भी तो थोड़ी देर की बात है, हम एक लॉन्ग टर्म नुकसान क्यों उठाएं किसी का भी या किसी को पहुंचाएं एक शॉर्ट टर्म हर्ट से बचाने के लिए।
अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम अस्सलाम।
सर ये जो दूसरा पॉइंट है सर, ये
जी
इस पे आपने जैसे कहा ना कि इस पे आमतौर पर ज्यादातर लोग इसी के ऊपर भी ज्यादा रह जाते हैं, उसकी वजह कुछ ये इसलिए नहीं नजर आ रही कि वो मतलब ये कि वो नॉर्मली जैसा चलता चला जा रहा है वो उसी पर खुश है, और जो अगली नेक्स्ट स्टेज है उसमें मैच्योरिटी चाहिए होती है, उसमें डिसाइसिवनेस चाहिए होती है, उसमें मेंटली भी मैच्योरिटी चाहिए, तो शायद उस तरफ आने से लोग डरते हैं, लोगों की मुखालफत से डरते हैं, तो इसकी रीजन ये हो सकती है सर।
ये देखिए जो अभी सवाल आया है ये भी इसी नौयत का सवाल है कि दूसरा माइंड कर जाएगा, मैंने अगर ना कर दी तो दूसरा माइंड कर जाएगा। ये जो एस्पेक्ट है असल में इसको अगर आप गौर करें तो ये बात कि मैंने अगर कुछ किया तो मेरी वालदा नाराज हो जाएगी, मेरे वाल सब नाराज हो जाएंगे, मेरे मेरे हमसाए मुझसे दूर हो जाएंगे, यू नो वट एवर लोग क्या कहेंगे, ये जो एस्पेक्ट है ये इसकी वजह क्या है, मैं ये आपसे अर्ज कर देता हूँ। ये जो इससे अगली स्टेज है जो जिसको आप प्रिंसिपल सेंटर्ड कहेंगे या जिसको साइकोलॉजी की जुबान में रॉबर्ट कीगन ने इंस्टीट्यूशनल स्टेज कहा है, वो प्राइमरीली तब आती है जिस वक्त आदमी इंट्रोस्पेक्शन और रेट्रोस्पेक्शन करता हो, आदमी जब अपने बारे में कॉन्शियस हो जाए, जब उसके वो अपने इन सवालात को वाकई एंटरटेन करने लग पड़े कि ये किसने कहा है कि ये ठीक है, ये किसने कहा है कि ये लोगों की राय जो है वो इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, ये ऐसा क्यों, यानी मैं अपने बिलीव्स के बारे में, मैं अपनी अपनी वैल्यूज के बारे में टिल द टाइम दैट आई बिकम कॉन्शियस मैं इससे अगली स्टेज पे जा नहीं सकता। ये जो स्टेजेस हैं, ये जो दो मैंने आपसे पहली दो स्टेजेस हैं, ये ऑटोमेटिकली आ जाती हैं, यानी सिर्फ इसलिए आ जाती हैं क्योंकि आपकी जिंदगी का जो सर्कल है जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है वो बड़ा हो गया है। ठीक है जी, पहले आप घर ही में रहते थे, इसके बाद आप स्कूल जाना शुरू हो गए, इसके बाद दफ्तर में मुलाजमत शुरू कर दी, ये जो सारी चीजें हैं ये चूंकि आपका सर्कल बड़ा होता जा रहा है इसलिए असल में प्रिंसिपल वही है कि दूसरों की वैल्यूज या दूसरों की सुनी सुनाई वैल्यूज को मैंने अपने ऊपर अप्लाई कर दिया और मैं उसी को करने में ठीक महसूस करता हूं। मैं जैसे ही इस चीज से निकलने की कोशिश करूंगा तो असल में मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है। ये जो अपने पैरों पर खड़ा होना है इसके लिए जरूरी है कि मैं प्राइमरीली इस जगह पर खड़ा हूं कि मैं आई एम विलिंग टू लेट गो। ठीक है ना जी, मैं अपने वो जो एस्पेक्ट था जो मैंने आज तक सीखा था उसको छोड़कर, तो मैं ये बता रहा हूं कि मैंने अब अपने प्रिंसिपल्स डिटरमिन करने हैं। ये जब तक नहीं हो सकता जब तक कि मैं इंट्रोस्पेक्टिव नहीं होऊंगा। तो ये बात आपकी ठीक है कि कॉन्शियस होना जो हम आमतौर पर करते क्या है, आप गौर कीजिएगा, हम आमतौर पर ये करते हैं कि इस नौयत के जो सवालात होते हैं जो हमारे अंदर मुश्किल पैदा करते हैं, जो हमें अनकंफर्टेबल कर रहे होते हैं, हम उनको अवॉइड कर जाते हैं, दूसरों से बात करना भी अवॉइड कर जाते हैं जिधर हम अनकंफर्टेबल होने का चांस हो। तो इस चीज के इस डिसकंफर्ट को बर्दाश्त करने के लिए तैयार होना जरूरी है इस स्टेज से आगे बढ़ने के लिए।
लेकिन सर डिस्कम्फर्ट में भी तो रहना, मतलब ये कि अगर जो चीज बेचैन कर रही हो वो जब तक मालूम ना कर ले उस वक्त तक भी तो चैन रहता नहीं है, ऐसे होता तो नहीं है ना कि ये मतलब सही गलत का पता ना चल जाए जब तक
आपने ना हो जाए। बात फरमाई नहीं, देखिए इसमें दो चीजें हैं, एक ये है जो आपने फरमाई है बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा है अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने इसकी तौफीक दी, कि ये एक मेच्योर बात है जो आपने की है। आमतौर पर इसके बरक्स होता है जी, बरक्स क्या होता है कि आदमी ये फैसला करता है कि यार ठीक है यार जो मैं कर रहा था ना मुझे इसी पर रहना है। ठीक है ना, यानी अगर कोई चीज डिस्कम्फर्ट या कोई चीज क्वेश्चंस पैदा कर रही है तो उसको अवॉइड करने का एटीट्यूड पैदा हो जाता है। ये जो अवॉइडेंस का एटीट्यूड है ये रुकावट डालता है हक मानने में, लेकिन इंसान इसमें कंफर्टेबल ज्यादा होता है। मुझे बहुत ज्यादा चेंज नहीं करने की जरूरत अपने आप।
सही सर, बहुत शुक्रिया सर। एक छोटा सा सवाल है, वो भी मेरी बेटी ने पूछा है। मेरी बेटी ने अभी MS क्लिनिकल साइकोलॉजी में एडमिशन लिया है, तो वो कहती है कि मतलब टेस्ट्स और उसके बाद उनके इंटरव्यू और उसमें जब इसका इंटरेक्शन हुआ वहां पर जो इसकी सारी क्लासमेट्स उनके साथ, तो कहती है कि वो बहुत ही अजीब सा है कि यानी कि बहुत ज्यादा ऐसा कंपटीशन है कि उसमें एक दूसरे की टांगे खींचना, गलत बयानी करना, झूठ बोलना, नॉन कोऑपरेटिव होना, तो ये तो बहुत डिसहार्ट हुई वहां जाके। तो कह रही मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं किस तरह रहूं, यानी जो मैंने BS किया था उसमें तो मैं हम लोग जो थे उतने आपस में कोऑपरेटिव और इतना ख्याल रखने वाले, और यहाँ अब एक तो साइकोलॉजी में है, क्लिनिकल साइकोलॉजी में, और इस तरह का माइंडसेट है, इस तरह नेगेटिव है अगर, तो ये आगे लोग कैसे काउंसलिंग करेंगे जो अपने ही लोगों की इसी तरह टांगे खींच रहे हैं और मतलब खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। कह रही कि इंटरव्यूज में और उसमें गलत बयानी की, फिर बाद में खुद ही बता रही है कि वो तो मैंने तुमसे गलत बताया था, अब सच बता रही हूँ, तो अब ये सुन लो। तो उसने कहा नहीं अब मुझे तो जरूरत नहीं है जो तुम बता रही हो उसको। तो कह रही मुझे नहीं समझ आ रहा मैं यहाँ किस तरह रहूँ, यानी इतने कंपटीशन में इंसान ऐसा भी हो सकता है, तो मैं क्या करूँ यहाँ इस माहौल में, कह रही हूँ।
देखिए, ये हमारी एजुकेशन का एक नॉर्मल जनरल माहौल यही है। यानी जब यही है तो फिर इसी माहौल में रहना है। बस कोशिश करें कि अपने ऊपर इसका रंग ना चढ़ने दें, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी हार्मफुल। ठीक है जी, ये पूरे का पूरा जो माहौल है, देखिए इसमें जो चीज को वैल्यू किया जाता है, जो जो स्टूडेंट रिवॉर्ड किया जाएगा, जिसको अवार्ड्स मिलेंगे, वो है कि जो आपके इस पूरे सिस्टम में एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्म करेगा। और वो परफॉर्मेंस अगर तो ये सेमेस्टर सिस्टम है, विच आई अज्यूम के सेमेस्टर सिस्टम ही होगा, तो फिर ये बिल्कुल ही उन लोगों पर डिपेंडेंट है कि जो अपने आप को टीचर्स का की नज़र में अच्छा साबित कर देंगे। और ये आपकी अपनी अखलाकियात पे भी बहुत बुरे असर डालेगा और दूसरों की भी। लेकिन जाहिर है कि हम दूसरों को तो नहीं रोक सकते हैं, आपको अपने आप को इन, ये जो अभी मैंने शुरू में बात अर्ज की थी बिल्कुल आगाज में आज, वो ये थी कि हमको ये मोटिव की जरूरत क्यों है, इस मोटिव को समझने की जरूरत क्यों है कि हमारा मोटिव टू डू द राइट थिंग क्या है। उसकी वजह ये है कि प्रिंसिपल सेंटर्ड लाइफ गुजारना कोई आसान काम नहीं होता। ये इसके अंदर बड़ी दफा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, बड़ी दफा अपने फायदे को फॉरगो करना पड़ सकता है, लोगों की ज्यादतियों के अंदर रहना है, हमने इस दुनिया में रहना है। ठीक है जी, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन, ये जो हमारा सिस्टम है जो एक बहुत बड़ी हमें एजुकेशन दे देता है, वो दुनिया का एक नक्शा दे देता है सामने कि तुम्हें इस दुनिया में जाना है और कोई चीज नहीं है। यानी हमें एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में रखा जाता है, हम वी आर ट्राइंग टू डेवलप यू नो कम्पेटिटिव स्पिरिट, बजाय इसके कोऑपरेटिव बने। हम सब ये जानते हैं यहाँ पे इकट्ठे सब लोग जो है वो इससे इत्तफाक करेंगे कि सोसाइटी में जो, अगर सोसाइटी की आप तामीर करना चाहते हैं, सोसाइटी को बेहतर करना चाहते हैं, तो उसमें कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव स्पिरिट की जरूरत है, ना कि कंपेटिटिव स्पिरिट की। कंपेटिटिव स्पिरिट जो है ये एक बिल्कुल गलत ख्याल है कि ये इंसान की परफॉर्मेंस बेहतर करती है। ये बिल्कुल एब्सोल्युटली इट हैज नो बेसिस इन रियलिटी। कोई रिसर्च इसको साबित नहीं किया करती है कि कंपटीशन जो है वो आपकी परफॉर्मेंस बेहतर करता है। जो असल चीज है वो ये कि हम के हमारे अंदर कुछ वैल्यूज क्रिएट कर देता है वो, कि जो आइंदा बड़ी सख्त नुकसानदेह होंगी, ना सिर्फ हमारे अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी। लिहाजा अपने आप को इससे बचाएं और जिस हद तक पॉसिबल हो इस अपॉर्चुनिटी से जो अल्लाह ताला ने आपको दे दी है, इससे ये फायदा उठाएं कि मैंने सीखना है। नंबर लेने की गेम से आप अपने आप को निकाल लें थोड़ी देर के लिए। ये जो बात है कि निकाल लें, इससे अगर आपका ये ख्याल है कि इसके नतीजे में आपको नुकसान होगा, पीपल विल थिंक दैट यू आर नॉट गुड, ऐसी कोई बात नहीं है जी। पीपल विल अल्टीमेटली वैल्यू व्हाट यू नो। मेरी डिग्री किसी को अट्रैक्ट नहीं करती, चाहे मैंने कोई पोजीशन ली हो, चाहे मैंने जो मर्जी किया हो, इट इज नॉट अट्रैक्टिव। लेकिन अगर मैं जो बात करता हूँ, इफ इट मेक सेंस, पीपल विल लिसन टू मी।
ठीक है सर, मैं उसको बता दूंगी, बहुत शुक्रिया।
जी बहुत वेलकम। इज द प्रोग्रेशन इंप्रूवमेंट बिटवीन द थ्री स्टेजेस लीनियर? आई मीन इन सम सिचुएशंस वी लुक एट सोसाइटी एंड सम प्रिंसिपल्स इनसाइड अस and you can move between these stages based on situations, or once you reach a stage you stay there, no regression from stages 3. No, it is not. This is a very very good question. I am very glad that you asked it. होता क्या है जी कि ये जो सवाल क्या है, इसको पहले तो ये समझ लीजिए, वो ये कह रहे हैं कि क्या ये जो प्रोग्रेशन है एक स्टेज से दूसरी स्टेज में, ये इस तरह होता है कि मैं अब अगर स्टेज 2 में घुस गया हूं या स्टेज 3 में आ गया हूं, तो अब स्टेज 2 खत्म हो गई है। ये अगर मैं मुकम्मल तौर पर स्टेज 3 में आ गया हूं तो ऐसा ही होगा। लेकिन बिलमूम ये जो 3 स्टेजेस हैं, ये बिलमूम इस तरह नहीं होता। जिंदगी में आप किसी शख्स से जब मिलते हैं तो असल में वो आम तौर पर किसी ट्रांजिटरी पीरियड में होता है। यानी मैं इसको अगर बयान करूं तो ये गलत नहीं होगा कि इंसान की जिंदगी तकरीबन 20-25% प्योर स्टेजेस में रहती है जी, वरना वो ट्रांजिशन में होता है। यानी ट्रांजिशन में होता है का मतलब ये है कि वो स्टेज 2 से स्टेज 3 में जा रहा होगा। स्टेज 2 से जब वो स्टेज 3 में जा रहा होगा, तो वो कुछ फैसले स्टेज 2 के हिसाब से कर रहा होगा, कुछ फैसले स्टेज 3 के हिसाब से कर रहा होगा। अच्छा, कुछ फैसले वो काफी पीछे भी कर सकता है, यानी कुछ चीजों के बारे में उसको ये भी ख्याल हो सकता है कि कहीं वालिद साहब को या वालदा को पता ना चल जाए। नाउ दिस इज अ रिग्रेशन। आमतौर पर रिग्रेशन नहीं होता है, हो भी सकता है, और वो क्यों होता है कि जिस वक्त एनवायरनमेंट आपको इस चीज का मौका ना दे, जिस तरह ही मैंने गुजारिश की है, ये जो अभी सवाल था कंपेटिटिव एनवायरनमेंट का, लोगों के डिसऑनेस्ट होने का, अगर मैं ये फैसला कर लूं नोइंगली कि मैंने असल में अब इसके बारे में, क्योंकि ये फायदेमंद है तो मुझे अब इससे ठीक है, आई शुड नॉट केयर अबाउट इट, तो जब मैं ये नोइंगली फैसला कर लूंगा तो इसके नतीजे में वो जो वैल्यूज मेरी पिछले कुछ अरसे में डिवेलप हुई हैं वो रिग्रेस करना शुरू कर सकती हैं। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन एंड थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस। द आंसर इज कि हम आम तौर पर ट्रांजिटरी स्टेज में होते हैं, यानी बिटवीन 1 एंड 2, बिटवीन 2 एंड 3, बिटवीन 3 एंड 4 आमतौर पर, एंड बिटवीन 4 एंड 5, ये जो स्टेजेस हैं ये इस ट्रांजिशन में आपका तकरीबन 60-70% टाइम जा रहा होता है जी। यानी आप किसी से मिलें तो चांसेस आर कि वो किसी प्योर स्टेज में नहीं होगा, वो किसी दो स्टेजेस के दरमियान ट्रांजिशन में होगा। और इसको बहुत ज्यादा क्लैरिफाई करते हैं जी बहुत ज्यादा कैटेगराइज किया जाता है, और ये कैटेगराइज करने का तरीका ये होता है कि फॉर इंस्टेंस इफ यू वांट टू डिटरमिन कि आप किस स्टेज पर हैं तो आई विल हैव टू इंटरव्यू यू, और फिर वो जो इंटरव्यू है उसको सुनकर मैं आपकी बात आपके साथ शेयर करूंगा कि आप इधर हैं, ठीक है जी, दिस इज वेयर यू आर। आमतौर पर उसको किस तरह कहा जाता है, मसलन 1-2 या 2-1, ठीक है जी, यानी जो स्टेज है मसलन उसको मेन में लिखेंगे आप 2 में और ब्रैकेट में लिखेंगे 1 के, यानी अभी 1 के असरात हैं, कुछ खत्म हो रहे हैं कुछ, ठीक है जी। तो दिस इज अ ब्रिलियंट क्वेश्चन एंड आई होप दैट माय आंसर इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल फॉर यू इंशाल्लाह। प्लीज डू कंफर्म, आप व्हाट्सएप यूट्यूब पे भी शायद कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि बात समझ में आ गई है, अगर कोई फॉलो अप क्वेश्चन हो तो वही बता दीजिएगा प्लीज।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी, खैरियत से
जी? बिल्कुल ठीक ठाक। ये सर मेरा सवाल ये था कि ये जो स्टेजेस आपने भी बताई हैं 1, 2 और 3, तो जैसे अभी ऐसे इंसान जब भी इस दुनिया में पैदा होता है तो वो एक हिस्टोरिकल फ्लो में पैदा हो रहा है, यानी आज से 100 साल या 200 साल पहले नेशनल स्टेट्स उस तरह नहीं थी जैसे आज के दौर में हमें नजर आती हैं। और तो जो मतलब वतन से मोहब्बत, खानदान से मोहब्बत, ये तो सब मानते हैं कि एक नेचुरल चीज होती है, तो ये जो असूल होते हैं राइट एंड रॉन्ग के, ये मतलब एक्चुअली इनका सोर्स कहाँ से आ रहा होता है? क्या फितरत है? तो क्या फितरत अगर है तो क्या आज जो इंसान पैदा हो रहा है वो आज से 200 साल पहले वाले इंसान से क्या उसकी फितरत मुख्तलिफ है? क्योंकि आज हम पैदा हो रहे हैं एक नेशनल स्टेट्स के दौर में जहां हम अपने वतन से मोहब्बत करना एक 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 बेसिकली एक वैल्यू है, तो डेफिनेटली आपने जैसे कहा कि 80% ऑफ द पीपल आर सिटिंग ऑन द स्टेज नंबर 2, और उसकी मिसाल हम दे सकते हैं कि जैसे हम बहुत सारी इंसानों ने जंगें लड़ी हैं इस नेशनल प्राइड के लिए, तो ये जो फितरत के जो असूल हैं, तो ये जो राइट एंड रॉन्ग का जो थर्ड नंबर है, ये जो असूल हैं, ये फितरत से अगर आ रहे हैं तो ये फितरत क्या तब्दील हो रही है इंसान की ओवर द टाइम, और अगले 200 साल में 50 साल में ये और चप चेंज होगी या ये वही रहेगी?
राइट देखिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो आपने कुछ मिसालें दी हैं, हम ट्राइबल थे, हम अपनी बरादरी के अंदर मैसूर रहे, फिर उसके बाद ट्राइबल हो गए, फिर उसके बाद यू नो मे बी ज्योग्राफिकली नेशनल हो गए, ये बेसिकली ये फितरत नहीं है। फितरत ये है कि इंसान अटैचमेंट रखता है, ठीक है जी, वो जो अटैचमेंट है वो किस चीज के साथ रखेगा ये असल में सोसाइटी डिटरमिन कर देती है, उसकी एनवायरनमेंट उसको बता रही है कि उसने अटैचमेंट रखनी है। इंसान अपनी मजहब से अटैचमेंट रखता है, अपने बिलीफ्स के साथ अटैचमेंट रखता है, अपने भाई के साथ अटैचमेंट रखता है, अपने मोहल्ले के साथ अटैचमेंट रखता है, अपने शहर के साथ रखता है, अपने यू नो एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये जो बात है कि ये इसमें से फितरत क्या है, फितरत सिर्फ इतनी है कि इंसान के अंदर ये पोटेंशियल है कि वो अटैच हो जाता है, ठीक है जी, वो उसके अंदर हमियत पैदा होनी शुरू हो जाती है अपनों के साथ, अपनी बरादरी, अपने माँ बाप, ये तो इंसान की फितरत, इसमें कोई चेंज नहीं आई कभी भी, ठीक है जी। व्हाट हैपेंड इज कि हमारा जो अटैचमेंट का सर्कल है वो असल में जब चेंज होता है तो ये हमें टीच किया जाता है, ये हमारी सोशल ट्रेनिंग है, ये हमारी सोशल कंडीशनिंग है। जो हमारी सोशल कंडीशनिंग है, यूँ समझ लें कि इसको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब हम किसी चीज में फितरत की बात करते हैं तो वो असल में पोटेंशियल होते हैं। अगर आपके अंदर पोटेंशियल नहीं है, मैं इसको समझाने की गर्ज से एक मिसाल देता हूँ। आपने अगर अपने घर में, आपके घर में बच्चा है एक, और एक आपने कोई पेट पाला हुआ है, ठीक है जी, और आप दोनों को एक ही दिन घर लेकर आए हैं, अल्लाह ताला आपको औलाद दे, उसको आप घर लेकर आए और एक पेट को भी लेकर आए, एक हस्ती में ये पोटेंशियल है कि उसने, अगर आप उसको सही माहौल दे देंगे तो उसने जुबान सीख लेना है, ये है उसकी फितरत। और दूसरी हस्ती ने आप जो मर्जी माहौल दे दें, उसने बोलना नहीं शुरू करना, ठीक है जी, ये है फितरत के अंदर मौजूद पोटेंशियल्स का होना। इसी तरह से हमारे अंदर अटैचमेंट का पोटेंशियल है, आप उसको किस तरफ डायरेक्ट करेंगे उस लिहाज से वो अटैचमेंट चेंज हो सकती है। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन आसिफ साहब।
जी, बट जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन पर्पस, तो क्या हम ये, मतलब ये कह सकते हैं कि जैसे हक और बातिल जो है वो तो तब्दील नहीं होगा, या वो वक्त के साथ बदलेगा? जैसे फॉर एग्जांपल अक्सर मदबी रहनुमाओं के लिए ये बात की जाती है कि इंसानी जहन ने जब फॉर एग्जांपल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात की, उसकी एक्सेप्टेंस की बात की, और या फिर सॉरी एवोल्यूशन थ्योरी की एक्सेप्टेंस की बात की, तो मजहबी जो है हक और बातिल, उसने फिर उसको डिफाइन करना शुरू किया कि नहीं, उनके स्क्रिप्चर्स में भी ऐसी सब कुछ चीज मौजूद है जो इसको एक्सप्लेन करती है। तो मतलब क्या ये जो हक और बातिल वाली जो बात है, क्या ये भी बेसिकली मतलब मुस्तकिल रहेगी, या ये मतलब कैसे इसको हम देखेंगे?
नहीं, देखिए ये जो है साइंस की फील्ड बेसिकली इज अ फील्ड ऑफ एक्सप्लोरेशन, ठीक है जी। ये जो बात है कि साइंस कोई एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन का पोटेंशियल जो है इंसान के अंदर, क्यूरियोसिटी का होना, वो जानने की तलब होना उसके अंदर, ये उसकी फितरत है। इंसान के सामने अगर आप रीजनिंग प्रेजेंट करें और वो उस रीजनिंग से कन्विंस हो जाए, तो ये उसकी फितरत है जिसको हम मस्क कर सकते हैं कि हमको वो बात माननी चाहिए। ये इंसान के अंदर ये वो फितरी पोटेंशियल्स हैं, पोटेंशियल्स हैं ये सारे। और जिस तरह से पोटेंशियल्स कोई भी होते हैं, उनको आप इस्तेमाल ना करें तो नहीं करें, मतलब आपकी मर्जी है। आप, यू डोंट वांट टू लिसन टू समथिंग, यू कैन टर्न ऑफ योर ईयर्स, वहां पे म्यूजिक चलता रहे, लोग बात करते रहे, इफ यू डोंट वांट टू पे अटेंशन, यू रिफ्यूज टू पे अटेंशन। तो ये जो हमारे अंदर ये पोटेंशियल्स हैं, अब ये जो बात है कि मिसाल के तौर पर कोई मजहबी किताब को मानना, ये फितरत नहीं है इंसान की, ठीक है जी। आप ये कह सकते हैं कि मजहबी किताब जिस पैगाम को दे रही है वो फितरी है, यानी वो फितरी तरीके पर दे रही है, फितरत के मुताबिक दे रही है, या फितरत के मुताबिक है वो पैगाम जिसको मैंने समझा है, ये सब चीजें आप कह सकते हैं। लेकिन किसी किताब का पैरोकार होना या ना होना, ये इंसान की फितरत नहीं है। इंसान की फितरत ये है कि जब मुझे एक बात सही समझ में आ जाए तो फिर मुझे उसको मानना चाहिए, ये उसकी फितरत है जी। यानी फितरत ये है, अगेन कीपिंग इन माइंड कि मैं जब ये कहता हूँ कि ये उसकी फितरत है, से मेरी मुराद ये कि ये उसके अंदर अल्लाह ताला ने एक बड़ा खूबसूरत पोटेंशियल रखा है कि जब वो बात को समझ ले तो उसको मानना चाहिए, लेकिन वो चाहे तो इसका इनकार कर सकता है, वो चाहे तो इस फितरत को मस्क कर सकता है, वो अपने इस पोटेंशियल से अपने आप को दस्तबरदार कर सकता है।
बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।
ये मोस्ट वेलकम जी, ये मोस्ट वेलकम। अच्छा जी, ये फरमा रहे हैं जी कि सो टेक्निक्स वुड बी डिफरेंट फॉर प्रोग्रेशन टुवर्ड्स द हायर स्टेज एंड अवॉइडिंग द रिग्रेशन टू अ लोअर स्टेज व्हिच वुड बी अनदर लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। यस यस इट वुड बी, बट आई वोंट से दैट द टेक्निक्स वुड बी डिफरेंट। बेसिकली आई थिंक दैट इंसान जो प्रोग्रेस करता है फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर, एक तो मैंने आपको ये गुजारिश की कि जो स्टेज वन जिसको मैंने कहा है उससे स्टेज टू में नेचुरली होती है कि जिस वक्त आपकी एनवायरनमेंट चेंज हो जाती है, वो जो इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। स्टेज थ्री से आगे असल में कॉन्शियसनेस से चेंज आती है, और ये वजह है कि यहाँ पर जो कॉन्शियसनेस से चेंज की जो सिचुएशन है, आप मिसाल के तौर पर क्वेश्चंस करते हैं, जो कोचिंग है इसमें हम यही करते हैं कि वी वुड लाइक टू गेट पीपल टू टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स, वो रिफ्लेक्शन उनके अंदर पैदा हो कि हम जिस चीज की तरफ तवज्जो दिलाना चाह रहे हैं, बजाय इसके कि उनको बताया जाए कि ये ठीक है और ये गलत है, उनको इस रास्ते की तरफ लेके आया जाए कि वो गौर करें। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो उसी बात पे पहुंचे जिस पे हम पहुंचे हैं, लेकिन कम से कम गौर करना शुरू करें, गौर करें और जो बात ठीक लगती है उसको माने। ये जो एस्पेक्ट है, अगर आप ये अडॉप्ट करते हैं तो इसके नतीजे में अल्टीमेटली, एंड अगेन दिस इज अ लर्निंग प्रोसेस, ये ऐसा नहीं है कि आप दो छड़ियां मार के तो बच्चे को एक नए डेवलपमेंट स्टेज पहुंचा देंगे। ये एक पूरे का पूरा प्रोसेस है जिससे वो गुजरेगा और ये एक इंटरनल प्रोसेस है, ठीक है ना जी। ये जब मैं समझ जाता हूँ कि ये एक इंटरनल प्रोसेस है, तो फिर मुझे उसकी हेल्प करनी है, ना कि उसको फोर्स करना है डेवलप करने पे। हर आदमी ने इस मामले में अपनी अपनी स्पीड पर अपने पोटेंशियल के मुताबिक डेवलप करना है, इंशाल्लाह वो कर जाएगा, वो कर जाएगा, इंशाल्लाह जरूर कर जाएगा। व्हाट यू कैन डू इज हेल्प देम स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग, बीइंग मोर कॉन्शियस ऑफ देयर एक्शंस, अपनी फीलिंग्स पर गौर करें, अपनी अपनी एस्क्राइब वैल्यूज पर गौर करें। इसके लिए जो वो टॉपिक है ना जी, जो हम कर चुके हैं कुछ, बहुत ज्यादा तफसील में तो नहीं किया, तफसील में इंशाल्लाह वर्कशॉप होगी तो उसमें जरूर करते हैं हम, वो है क्रिटिकल रिफ्लेक्शन का। मैं जो चीजें मान रहा हूँ वो उन पे गौर करना शुरू करूँ कि कितनी कितनी सच्चाई है उनमें, ये किन अजम्पशन से बेस करता हूँ मैं अपनी राय। ये जो मैंने आपके साथ जो पूरी बात शेयर की है, इसके पीछे कुछ अजम्पशन है, वो इंसान की यानी ये पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है थ्रू आउट हिज लाइफ, वो कैसे हो रही है और कैसे रुक जाती है। देखिए इसमें अजम्पशन ये है कि इंसान अगर रिफ्लेक्शन नहीं करेगा तो आगे उसकी डेवलपमेंट नहीं होगी। अगर ये बात ठीक है और ये आपको अगर ठीक लगती है तो फिर इस पर गौर करते हुए हमें दूसरों को भी प्रमोट करना है कि वो अपनी कॉन्शियसनेस और रिफ्लेक्टिव एबिलिटी को ज्यादा से ज्यादा डेवलप करें। सो इट इज कॉम्प्लेक्स, यस, एंड इट इज नॉट इवन ईजी, लेकिन ये कि इट कैन वी कैन डू दैट विद सम एफर्ट
सर। ये हम काफी सुनते हैं कि दैट मैन इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल और मैन ऑफ वैल्यूज। बेसिकली ये प्रिंसिपल्स और वैल्यूज ये हैं क्या, और क्या ये प्रिंसिपल्स और वैल्यूज दो मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ नहीं हो सकती? एक समझता है कि मैं जो बात कर रहा हूँ या मैं जो मेरे प्रिंसिपल्स हैं वो ठीक हैं, या कोई ये यूनिवर्सल एक फैक्ट है जो प्रिंसिपल्स, इसकी मुझे थोड़ी सी एग्जाम्पल्स चाहिए कि किन चीज़ों को हम प्रिंसिपल्स कहते हैं, किन चीज़ों को हम वैल्यूज कहते हैं।
और मुझे नहीं मालूम ये आप इतने कसरे नफसी से क्यों काम ले रहे थे कि ये सवाल जो है ये कोई शायद गलत सवाल है। इट्स अ वेरी वंडरफुल क्वेश्चन, और अब देखिए जो जवाब मैं देने लगा हूँ हो सकता है दैट माइट बी अ वेरी स्टूपिड आंसर, सो एक्सक्यूज मी फॉर दैट। अपने इल्म के मुताबिक मैं बताऊंगा जी आपको, ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो उसमें इख्तलाफ नहीं है, ठीक है जी। दीज आर यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, और ये आप किसी भी सोसाइटी में रहते हैं, किसी भी जगह पे रहते हैं, किसी भी टाइम में रहते हैं, ये वो प्रिंसिपल्स हैं। जिस तरह से अभी मैंने अभी एक सवाल के जवाब में गुजारिश की कि ये इंसान का पोटेंशियल है कि वो अटैचमेंट पैदा कर लेता है, ठीक है जी। आप किसी भी जगह पे रहते हैं, कहीं पे भी रहते हैं, लोग अपने इलाके से, अपने लोगों से, अपने आसपास मौजूद एनवायरनमेंट से अटैच्ड फील करते हैं। द थिंग इज दैट हम कई दफा इस चीज को कॉन्शियसली खत्म करने की भी कोशिश कर सकते हैं कि नहीं, मुझे नहीं होना अटैच, ठीक है जी। सो इंसान ये भी कर लेता है और साधु भी बन सकता है। सवाल ये है कि जो आपने फरमाया कि दो लोग दोनों प्रिंसिपल सेंटर्ड हो सकते हैं और दोनों डिफरेंट तरीके से देख सकते हैं, असल में मिसाल के तौर पर एक सिचुएशन ये है कि जिसमें आपको आपके सामने प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस भी हो सकता है, प्रिंसिपल ऑफ कंपैशन भी हो सकता है, प्रिंसिपल ऑफ एम्पथी भी हो सकता है। तो आप कौन सा इस वक्त किस प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे, उसके मुताबिक आपका रवैया हो सकता है चेंज हो जाए। मैं ये समझता हूँ कि कई मरतबा ये हो जाता है, यानी इफ यू लुक एट इट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव जिसमें कि आप समझते हैं कि इंसाफ होना चाहिए तो मामला और होगा, आप ये समझते हैं कि नहीं थोड़ी सी नरमी होनी चाहिए, काइंडनेस के साथ मामला करना चाहिए, मामला और हो जाएगा। ये और ये पोजीशन पोजीशन पे डिपेंड भी करता है कि आप किस पोजीशन पे हैं और आपको कौन से प्रिंसिपल इख्तियार करना चाहिए, ये खुद एक ट्रेनिंग की जरूरत है। जो ये बात है जो आपने फरमाई एक सवाल के, ये प्रिंसिपल्स कहाँ से आए हैं, और मेरी इस बारे में राय ये है कि ये प्रिंसिपल अल्लाह ताला के वदियत करदा प्रिंसिपल्स हैं और यही वजह है कि वो यूनिवर्सल हैं, उसमें कहीं पे कोई इख्तलाफ नहीं है। जहां तक वैल्यूज का ताल्लुक है, ये एक ऐसी टर्म है कि जिसके बारे में यूज करने वाले की डेफिनेशन जरूर पूछ लेनी चाहिए जी। मैं आमतौर पर अपने सेशंस में वैल्यूज कहता हूं प्रिंसिपल्स के मुताबिक बिहेव करने के तरीकों को। मिसाल के तौर पर आपका प्रिंसिपल है ऑनेस्टी, ठीक है जी, तो उसका कोई बिहेवियर सोचिए जो आपको रोजमर्रा पेश आ सकता है, मैं उसको वैल्यू कहता हूँ जी। वैल्यू यानी अब यूं समझ लें कि प्रिंसिपल बेस्ड बिहेवियर को मैं वैल्यू कहता हूँ, या इस तरह समझ लें कि मैं उसकी मिसाल देता हूँ कि वो क्या वैल्यू हो सकती है। प्रिंसिपल का प्रिंसिपल जो है वो है ऑनेस्टी, ठीक है जी। उसके तहत मैं ये लिखूंगा दैट व्हेनेवर आई रियलाइज दैट आई हैव मेड अ मिस्टेक आई शुड नॉट हैव एनी क्वाम्स इन एक्सेप्टिंग इट, मुझे उसको मानना चाहिए। ये प्रिंसिपल ऑफ ऑनेस्टी के तहत एक बिहेवियर है, मैं इन बिहेवियर्स को वैल्यू कहता हूँ, ठीक है जी। लेकिन ये कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है जी। वैल्यूज बिलमूम लोग जो हैं वो इसको इंटरचेंजेबली भी इस्तेमाल कर लेते हैं कि प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज, यू नो, इसको मतलब ये सिनोनिमस टर्म्स के तौर पर भी यूज कर लेते हैं। मैं इस मामले में जो राय रखता हूँ मैंने आपसे अर्ज कर दी है, लेकिन ये कोई यूनिवर्सल इसकी डेफिनेशन नहीं है। ये जो यूज कर रहा है उसका लिटरेचर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो किस मानी में यूज कर रहा है जी। हमजा साहब, बात मैं वाज़े कर सका हूँ जी?
जी सर, काफी हद तक, बहुत शुक्रिया।
अगर कोई चीज रहेगी तो मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा जी उसको मजीद बात।
सर, एक सिर्फ जो बात थोड़ी सी मजीद तफसील मैं मांगना चाहूंगा, इसका मतलब यह है कि अगर प्रिंसिपल एक है वो चेंज नहीं हो सकता, तो इसका जो और वैल्यूज आप कह रहे हैं कि वे टू फॉलो प्रिंसिपल, तो इसका मतलब है कि दो बंदे अगर हैं तो वो दोनों की वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं, अगर मंजिल एक है तो दो रास्ते डिफरेंट हो सकते हैं दोनों के।
मतलब असल में उसके उसके यूं समझ लें कि मेरा प्रिंसिपल है ऑनेस्टी का, लेकिन मेरे मेरे अभी तक कॉन्शियस में नहीं आया ये बात कि उसी प्रिंसिपल की एक एप्लीकेशन ये भी है कि मुझे अपनी गलती मान लेनी चाहिए। जब भी मैं रियलाइज करूं कि मैंने गलत किया है तो मुझे उसमें को बहुत ज्यादा तरद्दुद नहीं होना चाहिए मानने में। ये अगर मैंने रिकग्नाइज कर लिया है और मैं नहीं कर रहा फॉलो, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि मैं असल में उस प्रिंसिपल को पूरी तरह मान नहीं रहा, फिर मैं कोई ट्रांजिशन की स्टेज पे हूँ। लेकिन अगर मैं ये रिकग्नाइज नहीं कर सका अभी तक, ये सिचुएशन पेश नहीं आई, तो फिर मेरा ख्याल है कि इसकी गुंजाइश है कि दो डिफरेंट हो सकती हैं। बिलमूम अगर मैं आपसे हम अगर ये करते हैं हम ये काम, व्हेन वी रीच द टॉपिक ऑफ डिटरमिनिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ आवर लाइफ, जब हम ये टॉपिक लेंगे आप देखेंगे कि उसमें हमारा ये पूरा टॉपिक होता है। जिन लोगों ने अटेंड की हुई है ये वर्कशॉप्स, पास यहाँ पे मुझे चेहरे नाम नजर आ रहे हैं, वो ये जानते हैं कि हम इसके ऊपर काम करते हैं कि इस प्रिंस ये मेरा प्रिंसिपल होगा, लेट्स से काइंडनेस मेरा प्रिंसिपल होगा, ठीक है जी। तो काइंडनेस का जो प्रिंसिपल है उसमें मैं क्या करूंगा, इसमें आप कुछ और तय कर सकते हैं, मैं कुछ और तय कर सकता हूँ, लेकिन व्हेन वी टॉक टुगेदर तो आप हो सकता है कि मैं आपकी वैल्यूज ज्यादा पसंद करूं और वो ले लूं, और आप मेरी पसंद करें आप भी ले सकते हैं। सो आई थिंक इट इज अ मैटर ऑफ थिंकिंग अबाउट इट, लेकिन यस ये हो सकता है। और ये भी पॉसिबल है कि आप ये समझें इस मौके पर कि मुझे इस मौके पर जिस तरह मैंने अर्ज किया इंसाफ करना चाहिए, हक का तकाजा ये कि इंसाफ करूं, और एक दूसरा आदमी ये समझ रहा हो कि नहीं मुझे रहमत के साथ काइंडनेस के साथ मामला करना चाहिए। ये मैं कोई जज बना के नहीं भेजा गया हूँ, मुझे रिफॉर्म करने की कोशिश करनी है, और रिफॉर्म करने में जो वैल्यू ज्यादा इम्पोर्टेंट होनी चाहिए वो इंसाफ नहीं बल्कि काइंडनेस है। तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है जी। यानी समटाइम्स टू प्रिंसिपल्स कैन कम इन क्लैश और वही आपको जिंदगी को बैलेंस करने का बायस बन सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप कई दफा प्रिंसिपल से हटते हैं, हटना पड़ सकता है आपको। हटते क्यों हैं? क्या इसलिए हटते हैं कि हटने में फायदा है तो ये अब प्रिंसिपल सेंटर्ड फैसला नहीं होगा, लेकिन हटते इसलिए हैं कि इस वक्त ये प्रिंसिपल शुड नॉट बी अप्लाइड, एक दूसरा प्रिंसिपल ज्यादा एप्लीकेबल है, तो ये प्रिंसिपल सेंटर्ड फैसला होगा। ये इस मामले में जी एक चीज को ध्यान में रखें, आपको ये तकल्लुफ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि सवाल हो गए तो एक से ज्यादा सवाल नहीं हो सकता। अगर अभी तशनगी है कोई, आप समझते हैं कि इफ यू आर नॉट फुली यू नो सॉर्ट ऑफ यू डिड नॉट गेट द आंसर टू योर क्वेश्चन, तो आप प्लीज इसको पूछ लिया करें। इसमें मेरा भी फायदा होगा, मुझे भी समझ में आती है फिर कि यहाँ पे मैंने प्रिसाइसली बात नहीं की है, उसको मैं भी सीखूंगा इंशाल्लाह।
जी मुसब अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, खैरियत से?
आवाज ठीक आ रही है जी?
जी जी बिल्कुल ठीक है।
अच्छा, अगर आप इजाजत दें तो मैं दो कमेंट करूं पहले।
प्लीज प्लीज।
एक तो आपकी कोई बैकग्राउंड थोड़ी सी डिफरेंट नजर आ रही है आज, और बहुत ही जबरदस्त किस्म की बैकग्राउंड नजर आ रही है। जहां भी आप बैठे हैं बहुत कोई बहुत आलीशान किस्म की जगह है।
ये बैकग्राउंड जी पिक्चर है ये? मैं एक ऐसे घर में हूँ इस वक्त अपनी बेटी के पास जो वन बेडरूम हाउस है, मैं असल में किचन में बैठा हूँ।
I'm mistaken.
I'm very glad that you are, but I mean that shows that this it is effective.
नहीं नहीं जबरदस्त।
मैं जो impression देने की कोशिश कर रहा हूँ वो दे पा रहा हूँ।
नहीं नहीं 10/10
जबरदस्त। ठीक।
अच्छा, आपने एक बड़ी अच्छी वादे की चीज के, अल्लाह ताला ने इंसान की जो फितरत में एक जो इल्हाम की है चीज, वो आपने उसको बड़ा अच्छा क्लैरिफाई किया। मुझे नहीं इतना इस तरह से क्लैरिटी में था कि वो एक्चुअली अल्लाह ताला ने पोटेंशियल इल्हाम किया आपको। आपको सच बोलने का ही पोटेंशियल है। ये आपके एनवायरनमेंट है जो आपको झूठा बना देते हैं, आपके पेरेंट्स आपको झूठा बना देते हैं, आपके उस्ताद आपको झूठा बना देते हैं, आपके कुलीग आपको झूठा बना देते हैं, आपकी सोसाइटी आपको झूठा बना देते हैं। तो अल्लाह ताला ने पोटेंशियल दिया है, आपने उस पोटेंशियल को कैसे मेंटेन करना है?
जी यानी देखिए, ये बात आपकी काफी हद तक ठीक है कि देयर कैन बी अ स्टेज इन लाइफ, शुरू की स्टेजेस में ये हो सकता है कि जो कुछ मुझे लोग बना रहे हैं मैं वो बनता चला जाऊं। लेकिन जिस तरह मैंने अर्ज किया कि जो तीसरी स्टेज जब जिंदगी में आती है, जब मैं कॉन्शियस होता हूं, आती पोटेंशियली हर एक पे है, ठीक है जी, लेकिन मैं उसके जो सवालात मेरे अंदर पैदा होते हैं, जिस तरह से अभी शबाना साहिबा का जो सवाल था कि सवाल पैदा हुआ और मैंने उसको इग्नोर कर दिया कि छोड़ो परे यार, इस झंझट में कौन पड़े, इतना गौर करने की क्या जरूरत है, आदमी इतना भी गौर ना करे कि फलसफी बन जाए। इस नौयत की जो आर्गुमेंट्स हम एक अपने साथ कर रहे होते हैं उसके नतीजे में हम गौर करना अवॉइड कर जाते हैं। यानी मेरे दोस्त ने बचपन में मे बी ऐसा मामला हुआ हो कि जिसके नतीजे में मैंने गलत साथ दे दिया हो या उसने मेरा गलत साथ दे दिया हो, लेकिन जिंदगी में हम ग्रो करते हैं और फिर हमें पता चलता है कि यार वो गलती की थी, हमें इस तरह से झूठ नहीं बोलना चाहिए था, हमें इस तरह से एक दूसरे का नाजायज साथ नहीं देना चाहिए था, और फिर हम ग्रो करते हैं, हम फिर उन वैल्यूज को छोड़ देते हैं। इंसान एक हद तक तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, और मेरे हिसाब से जब मैं पेरेंटिंग के बारे में बात करता हूँ तो उसमें एक पूरा टॉपिक है जी, इसीलिए कि हमारी एनवायरमेंट बच्चों को क्या बना रही है, इस पे गौर करना है। यानी एक मेरा रोल मॉडल है, एक एनवायरमेंट है जिसका असर पड़ रहा है। मिसाल के तौर पर एनवायरमेंट क्या है, आपने अगर बच्चों को ये बता दिया है कि तुम्हें गौर नहीं करना, तुम्हें सिर्फ याद करके जवाब देना है, ठीक है जी, इफ यू हैव नॉट मेमोराइज्ड इट यू आर अ बैड स्टूडेंट, ये एनवायरमेंट हमें सबक देती है स्कूल में, और इसके नतीजे में बच्चे जो बहुत ज्यादा कंप्लाइंट होते हैं वो याद करना शुरू कर देते हैं। समझने के ऊपर ज्यादा तरद्दुद करने की क्या जरूरत है, ठीक है ना जी, याद करें, ये एनवायरमेंट का इम्पैक्ट है जो इंसान के ऊपर हो रहा होता है। बट द थिंग इज दैट वी ग्रो, और अगर हम अपनी अपनी ग्रोथ में कॉन्शियस रहें तो एक टाइम आएगा कि जिस वक्त वो जो असरात हैं जिंदगी के वो खत्म होने शुरू हो जाएंगे। यानी आप एक सोसाइटी में पैदा हुए, आप सहाबा को देखिए, यानी सहाबा कराम जो है जिस सोसाइटी में पैदा हुए, अक्सर लोग जो है वो उन सोसाइटी की वैल्यूज ही पे खड़े थे, उसमें सोशल वैल्यूज जो उनकी रिलीजियस बहुत सारे बिलीफ होंगे वो हो सकता है ठीक ना हो उस मौके पर जब तक के इस्लाम नहीं लेके आए, लेकिन देयर कम्स अ टाइम जिधर गौर करने की सलाहियत अल्लाह ताला ने जो पोटेंशियल दिया हुआ था वो क्वेश्चन करने लग पड़ी, पैगंबर आ गए, ठीक है जी, उन्होंने सवालात पैदा कर दिए, गौर किया और ये तौफीक मिली कि वो मान लें अपनी अपनी हक परस्ती में मान ली उन्होंने, और इसके नतीजे में वो उनका मकाम जो है वो कुछ और हो गया। ये जो सिचुएशन है कि हमारी जिंदगी में ये स्टेज आती है व्हेन वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट यू नो क्रिटिकली, मेरा ख्याल है कि ये हर इंसान के अंदर पोटेंशियली आती है अनलेस कि वो इसका दरवाजा खुद बंद कर दे।
जी जी, शायद अल्लाह ताला ने इसको उसी तरह से कहा है कि इंसान उसी रो में चलता जाए तो इंसान के दिल पर काले धब्बे पड़ते जाते हैं, वो बढ़ते जाएंगे, एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि वो उन धब्बों से नहीं निकल सकेगा।
क्वाइट राइट, अल्लाह ताला इससे मुझे और आप सबको महफूज रखे।
जी, सवाल मेरा मेन ये है जी कि ठीक है आपकी बात बड़ी अच्छी तरह से समझ आई है कि स्टेज थ्री जो है यही एक आपकी लाइफ में डिजायरेबल प्रेफरेबल स्टेज है, और उसमें आप अपने प्रिंसिपल को ऊपर नीचे कर सकते हैं, किसी वक्त किसी प्रिंसिपल पे आपने फोकस ज्यादा करना है, किस एज पे, किस स्टेज पे, किस अपनी डेजिग्नेशन पे, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन प्रिंसिपल तो यूनिवर्सल है और टाइमलेस है।
बिल्कुल ठीक है,
मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आपने एक प्रिंसिपल रख लिया कि मैंने भी कभी झूठ बोलना ही नहीं है, मैंने तो सच बोलना है, मैंने अपने बच्चों को ये कहना है कि कभी झूठ बोलना नहीं, कुछ भी हो जाए झूठ नहीं बोलना। बल्कि मैं अगर शेयर करूं आपके साथ तो मेरे एक टीम मेंबर ने एक दफा मुझे कहा कि जी आप तारिक साहब आप तो जरूरत से ज्यादा ही सच बोलते हैं। यार ये क्या बात हम कर रहे तो मेरा सवाल ये होगा कि इसकी वजह से आपको जो चैलेंजेस दरपेश आते हैं खासतौर पे पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में, और वो क्या हो सकते हैं और उनसे ओवरकम कैसे किया जा सकता है, ये कोई आप अलहदा सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाएंगे या कैसे हमें पता चलेगा?
जी तारिक साहब, मेरी ये जो टॉपिक है ना जी, ये आज हम इसके एक इल्मी पहलू को ले रहे थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा कि मेरी अपनी जो कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी है और जिस तरह से मैं फेथ को इसके अंदर शामिल करता हूँ और फेथ से मेरी मुराद क्या है, यानी अल्लाह ताला को मान लेना कि वो मेरा खालिक है, या अल्लाह ताला को क्या मान लूं मैं, ये जो इस सवाल का जवाब है, व्हेन वी से दैट आई बिलीव इन गॉड, तो व्हाट इज इट दैट आई बिलीव इन, व्हाट डू आई मीन बाय बिलीव इन गॉड, इसको मैं कोशिश करूंगा जी एक्सप्लेन करने की कि मैं जिस वक्त खुदा को कहता हूँ कि मैं बिलीव करता हूँ तो, और या जिस वक्त मुझे कहना चाहिए, वो आइडियली क्या स्टेज होती है, हाउ डू आई लुक एट इट, ठीक है जी। और इसका ताल्लुक डायरेक्टली मैं समझता हूँ कि हमारे प्रिंसिपल्स को अडहियर करने की स्ट्रेंथ पर पड़ सकता है, आई थिंक, जैसा कि मैं देख रहा हूँ। मेरी गुजारिश है कि आप एक सेशन और इसमें दे दीजिए और फिर हम इसको, अगर ये सवाल फिर भी जवाब ना मिले इसका तो फिर आप ये जरूर पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह इसको जरूर ले लेंगे। जी
जी सर, थैंक यू वेरी मच जी,
मोस्ट वेलकम जी।
अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी,
कैसे हैं सर?
अल्लाह का शुक्र है जी, आप सुनाइए खैरियत से?
अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत सारी चीजों की तो वजाहत हो गई, जो हमजा साहब ने सवाल किया मेरा वही सवाल था, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही थी कि और वजाहत चाहिए मुझे। स्टेज टू में तो मुझे लगता है हम सारी जिंदगी जी रहे होते हैं, हमारे स्टेज टू के हिसाब से कोई ना कोई फर्द ऐसा जिंदगी में रहता ही है, वो पेरेंट्स की सूरत में हो या शौहर की सूरत में हो, उससे छुपाना ही पड़ता है हमें, क्योंकि उनके नजदीक गलत और सही का मियार और है और मेरे नजदीक गलत और सही का मियार और है। मुझे थोड़ी सी वजाहत ये चाहिए कि सही से मुराद क्या है और गलत से मुराद आपकी यहाँ पे क्या, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मुझे लगता है कि अगर इस चीज पे उन्होंने बाउंड्रीज बना दी हुई है मेरे लिए कि आपने इनसे नहीं मिलना या ऐसे इनसे कोई बात नहीं करनी, तो मैं अगर वहां बुक कर लेती हूँ और उनके नजदीक वो गलत है तो मसला तो वहां पे भी हो जाएगा।
नहीं, असल में क्यों गलत है जी, ये सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है जिस वक्त आप इस तरह की बात करते हैं, यानी हमें अल्लाह ताला इसी को पसंद करेंगे ना कि हमें लोगों के साथ बेहतरीन मामला करना चाहिए। अगर आपको किसी ने ये कहा है कि आप उनको सलाम ना करें या आप उनसे बात ना करें, تو یہ تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ یہ پوچھیں کہ کیوں نہ کریں اور انہوں نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی ہے تو میں یہ کیسے کر سکتی ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گی کہ میں نے اگر موقع آیا ہے اور میں نے ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا تو دیٹ وڈ بی رانگ آن مائی پارٹ. یہ بات کہ یہ صحیح ہے, میرا خیال ہے کہ اس معاملے میں کسی کے اندر بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم رک جاتے ہیں, رک جاتے ہیں, کیوں رک جاتے ہیں؟ اس لیے نہیں کیونکہ وہ پرنسپل غلط ہوتا ہے, اس لیے کیونکہ ہماری کسی وجہ سے انا, کبھی ہماری ہمارا فائدہ, کبھی ہمارے نقصان سے گریز, یہ چیزیں راستے میں آ رہی ہوتی ہیں. یعنی somebody has hurt me, تو میرا ایک پرنسپل ہے رسپیکٹ کا. اگر میرے ساتھ کسی نے ڈس رسپیکٹفلی معاملہ کیا ہے تو دس از دا ٹائم when my principle will seriously be tested. یعنی میں اگر یہ فیصلہ کر لوں کہ اب تو میں نے اس کی رسپیکٹ نہیں کرنی تو اس کا مطلب ہے کہ میرا پرنسپل نہیں تھا رسپیکٹ کا. دیکھیے کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہوگا, ہو سکتا ہے ہو, میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہے کوئی بھی نہیں ہوگا, لیکن میرا خیال ہے کہ بالعموم آپ کا لوگوں کے ساتھ, ایسے لوگوں کے ساتھ واسطہ نہیں پڑے گا جو یہ کہتے ہیں کہ جن سے بڑے محبت سے آپ کہیں السلام علیکم, آپ خیریت سے ہیں, تو آگے سے وہ گالی نکال دیں. ٹھیک ہے نا جی, واٹ جنرلی ہیپنز از کہ ہم گالی کے جواب میں گالی نکالتے ہیں. آپ نے یہی لوگوں سے دیکھا ہوگا نا کہ اگر کسی نے بدتمیزی کی ہے تو ہم آگے سے پھر کہتے ہیں اچھا ایسی کی تیسی میں بھی کرتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے کہ میرا پرنسپل بیسیکلی ریسیپروسٹی کا پرنسپل ہے, تم اچھا کرو میں اچھا کروں گا. جب بھی آپ زندگی میں اس جگہ پر کھڑے ہو جائیں کہ تم اچھا کرو میں اچھا کروں گا, تو اصل میں آپ کا کوئی پرنسپل نہیں ہے, آپ نے اپنی زندگی کی چابی دوسرے کے ہاتھ میں دے دی ہے اور یہ کہا ہے کہ اب تم جس وقت چاہو مجھے اسٹارٹ کر دو. مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح سے, گورنمنٹ کالج میں ایک ٹیچر ہوتے تھے ہمارے کہ جن کے بارے میں کلاس یہ ڈیسائیڈ کر لیتی تھی کہ آج ان کو ناراض کر کے بھجوا دینا ہے اور ود ان ٹو منٹس وہ بھاگ جایا کرتے تھے. یعنی کیا ہوتا تھا یہ, یعنی لوگوں نے وہ کرنا کہ جو بچوں نے یعنی کلاس نے, اور میں بات کر رہا ہوں انٹرمیڈیٹ کلاس کی یعنی گیارہویں کلاس کی, کہ ود ان ڈیز یہ پتا چل گیا کہ اس یہ صاحب جو ہیں یہ کس بات پر روٹ جاتے ہیں, یعنی کلاس سے ہی روٹ کے چلے جاتے ہیں, پیسے چاک پھینکی اور چل پڑے. ٹھیک ہے, یعنی یہ جو معاملہ ہے یہ آپ نے فوراً اپنی چابی دوسرے کے ہاتھ میں دے دی ہے کہ جب چاہو مجھے سٹارٹ کر لینا اور جب چاہو مجھے بند کر دینا. یعنی یہ اگنیشن اپنے ہاتھ میں رکھیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ پسند کیا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے اس کا کنٹرول میرے ہی ہاتھ میں رہے اور میں نے اپنی طرف سے جواب دینا ہے. سو آئی بلیو
بالکل سر, میں تھوڑا سا ایک اور چیز میں آپ کو سوری میں بتا دوں.
جی جی,
میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ صحیح اور غلط کا معیار ہم دو شخص کے میں الگ الگ ہے, مطلب وہ نارمل
الگ الگ نہیں ہے جی, الگ الگ
نہیں, نہیں جیسے فطرت کے پرنسپلز تو بالکل ایک ہیں, جھوٹ بولنا اس کو بھی غلط لگے گا مجھے بھی غلط لگے گا, لیکن کچھ غلطیاں ایسے جو نارملی اس کے نزدیک اس کو لگ رہا ہے کہ یہ غلط ہے, اس نے ایسا کر دیا مجھ سے چھپا کے تو یہ غلط ہے, اس میں مینجمنٹ تو ٹھیک ہے نا.
نہیں دیکھیے, میں آپ سے عرض کرتا ہوں اس کے بعد آپ ڈیسائیڈ کیجئے گا کہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. یعنی یہ فیصلہ تو آپ نے اپنی زندگی کے بارے میں کرنا ہے نا. آپ کبھی بھی کسی کی رسپیکٹ کرتے ہوئے اس لیے مت کیجئے کہ وہ کون ہے, آپ ہمیشہ دوسروں کی رسپیکٹ اس لیے کیجئے کہ آپ کون ہیں. یہ بات سمجھ آئی آپ کو؟
جی جی بالکل سر.
یعنی اگر کسی نے بدتمیزی کی ہے, کسی نے دل توڑا ہے, کسی نے جھوٹ بولا ہے, تو اب اس کی بے عزتی کرنا جو ہے وہ آپ کر لیں, مرضی ہے آپ کی, لیکن جب بھی آپ یہ کریں گے تو اصل میں یہ جو آپ کا ایکشن ہے یہ بتا رہا ہے کہ آپ کون ہیں, یہ نہیں بتا رہا کہ دوسرا کون ہے. آپ دوسروں کو پروٹوکول دیتے ہیں اس لیے مت دیجئے کہ وہ کون ہے, آپ اس لیے دیجئے کہ میں کون ہوں. آپ کی رسپیکٹ بالکل سٹیبل ہو جائے گی, آپ کا طریقہ بالکل سٹیبل ہو جائے گا جس وقت آپ اس جگہ پہ کھڑے ہو جائیں گے کہ میں دوسروں کے ساتھ معاملہ ان کے سٹینڈرڈ پہ نہیں اپنے سٹینڈرڈ پہ کروں گا, اور میرا خیال ہے کہ یہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جی. اور یہ بڑا بڑا اچھا ایک بڑا آبجیکٹو کرائیٹیرین ہے جاننے کا کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے. اس کے بارے میں جو اصل پرنسپل ہے صحیح اور غلط کا وہ یہ ہے کہ آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ صحیح ہے. دیکھیے اس کو پریزنٹ کرنے کا طریقہ نا, آپ لوگوں کے حوالے سے اگر سوچ رہے ہیں کہ مجھے مثال کے طور پر مجھے ہٹلر کی رسپیکٹ کرنی چاہیے, مجھے مجھے ابو جہل کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. ظاہر ہے کہ یہ ایک بالکل فضول قسم کی باتیں ہیں. کیوں رسپیکٹ کرنی چاہیے؟ سوال یہ ہے کہ میں کون ہوں, مجھے کیا گالی دینی چاہیے؟ یعنی am I a person who is abusive؟ تو یہ تو میری ذات بتائی, یعنی میں اپنی ذات کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. آئی ڈونٹ نیڈ ٹو بی کائنڈ ود ایوری بڈی, بٹ آئی نیڈ ٹو بی ریسپیکٹ فل. جب میں کسی کی بات کروں تو گالیاں دے کر میں بات کروں گی, یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے.
بہت شکریہ سر. لاسٹ میں پلیز ایک یہ وضاحت مجھے چاہیے کہ گناہ اور جرم کے زمرے میں ڈال سکتے ہیں ہم صحیح اور غلط کو؟
جانتے بوجھتے ہوئے غلط کرنا جو ہے, اگر آپ جانتے بوجھتے ہوئے غلط کر رہے ہیں تو وہ اصل میں جرم کی نوعیت اصل میں لیگلسٹک ہے. مثال کے طور پر آپ نے جھوٹ بول دیا تو اس پر کوئی سزا نہیں, ہمارا لیگل سسٹم اس پر کوئی سزا نہیں دیتا انلیس کہ وہ خاص نوعیت کا جھوٹ ہے. مثال کے طور پر آپ عدالت میں گئے ہیں, آپ نے ادھر جھوٹی گواہی دے دی اور پھر پکڑے گئے ہیں, تو اس کو وہ لیگل کرائم سمجھتا ہے. ورنہ جانتے بوجھتے ہوئے غلط کا ساتھ دینا یا غلط کرنا جو ہے یہ گناہ کی کیٹیگری کی چیز ہے جی. لیکن اس میں بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ کہ جانتے بوجھتے ہوئے ہو رہی ہے, آپ ایک چیز کو غلط سمجھتے ہیں اور پھر بھی کر رہے ہیں, تو یہ گناہ ہے.
بہت شکریہ سر, بہت شکریہ.
السلام علیکم مولوی صاحب, کیا حال ہے آپ کا؟
جی الحمدللہ, اللہ کا شکر, بالکل
مولوی صاحب. میرا یہ آپ سے سوال ہے آج کا, ہیئرنگ واٹ یو سیڈ, کہ دیکھیں سوسائٹی جیسے ایوالو کرتی ہے اسی کے حساب سے ہمیں اپنے لاز وغیرہ امپلیمنٹ کرنے چاہیے. لیٹلی دیئر از ٹرانسجینڈر بل جس پہ آرگیومنٹ ہو رہی ہے, اور میں نے پڑھا کہ اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل کے ماپ اینڈ سیٹ کہ نہیں جی اس میں بہت سی چیزیں اگینسٹ شریعہ ہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ پھر یہ ٹرانس جینڈر لوگوں کے رائٹس کا کیا ہوگا, کہ اگر ہر چیز ہم شریعہ کی امپلیمنٹیشن کے کہنے تو اس سے اسلامک کاؤنسل آف آئیڈیالوجی از دیر ریسپانسبلٹی, آر دے دا اتھارٹی ٹو فورس دس سارٹ آف تھنگ آن دا سوسائٹی؟ ایک یہ میرا سوال ہے, اور دوسرا پھر میں اس کے بعد آپ کو پوچھ لوں گی.
پاکستان میں تو ہم نے اتھارٹی دے دی ہے جی, یعنی میں اس پہ بات نہیں کر رہا کہ یہ ٹھیک دیا یا غلط دیا. پاکستان میں تو یہ اتھارٹی ہے کہ اگر کوئی بھی لا پاس ہو جس کے بارے پہ کلرجی یہ سمجھتی ہے کہ یہ یا اسکالرز یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کے خلاف ہے تو وہ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. البتہ یہ کانفیڈنس آپ اپنے دل میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے, دیکھیے دنیا تو قوانین اچھے برے صحیح غلط یہ پاس کرتی بھی رہے گی, بناتی بھی رہے گی, اور اس کا جواب بھی دے گی انشاءاللہ, اور خمیازہ بھی بھگتے گی. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے اور اس پر اطمینان رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں کسی بھی حق کو, کسی بھی حقدار کو اس کے حق سے محروم کرنے کا کوئی بھی نہ نام ہے, نہ اس میں ڈائریکشنز ہیں اس طرح کی, نہ اس طرح کے کوئی احکام ہیں. یہ ہماری سمجھ ہے, اور جس چیز کو ہم انفارچونیٹلی شریعت کہتے ہیں اس لینگویج میں, کہ جس لینگویج میں یہ بولا جا رہا ہوتا ہے وہ عام طور پر فقہ اور رائے ہے. ٹھیک ہے جی, لوگوں کی رائے کو ہم نے شریعت بنا لیا ہے. آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ ٹرانسجینڈرز ہوں یا کوئی بھی ہو, یعنی آپ جس چیز کو جو انسان کی سطح پر جو رائٹس ملنے چاہیے وہ کیسے محروم کر سکتے ہیں آپ کسی کو؟ اور اگر آپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ شریعت کے خلاف ہے تو لیٹ اس فرسٹ ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ کہ وہ کس چیز کو شریعت کے خلاف کہہ رہے ہیں, کون سی اس کے ایلیمنٹس ہیں شریعت اس بل کے, ٹرانسجینڈر بل کے, کہ جس کو وہ شریعت کے خلاف سمجھ رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر بات ہو سکتی ہے. میں اس کو بہت زیادہ فالو نہیں کر رہا جی, اگر آپ کے علم میں ہے تو مجھے آپ بتا دیجیے گا. But the idea that I would like to float is that انسان تو اچھے برے قوانین بناتا رہے گا, ٹھیک ہے جی, کبھی وہی بات جانتے بوجھتے غلط کرتا رہے گا, کبھی انجانے میں غلط کرتا رہے گا. جدھر انجانے میں غلط کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا ایکسکیوز جو ہے وہ یقیناً ضرور مانیں گے, جدھر جانتے بوجھتے غلط کرے گا پولیٹیکل وجوہات سے کرے گا, کسی پرنسپل کی بیسس پہ نہیں کر رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کا معافی کر لیں گے.
بٹ وہی سب ایسے پاکستان میں ویمنز جو رائٹس ہیں, جو ویمن کے حق مارے جا رہے ہیں, ہر چیز آپ شریعت کے نام سے کہہ دیتے ہیں نہیں جو شریعت میں نہیں الاؤ کی. ہو از گوئنگ ٹو ڈیسائڈ
کہ شریعت کون فالو کر رہا ہے, ہو از دا ون ٹو ڈیسائڈ کہ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ شریعت میں قرآن میں تو یہ نہیں لکھا ہوا. سو دس از واٹ پزلز می. مرنے کے بعد جو ہوگا وہ تو بعد کی بات ہے. مین وائل میں یہ فیل کرتی ہوں کہ ویمن ہمارے ملک میں بہت پستی ہیں, اینڈ وی آر ٹوٹلی ہیلپ لیس, اینڈ ایوری تھنگ از پٹ ان ٹو شریعت بائی ویدر اٹس دا کاؤنسل آف آئیڈیالوجی, ویدر اٹ واز دا مولویز, ویدر ایون پولیٹیشنز. سو دین واٹ فیوچر ڈو آر ویمن ہیو دیئر؟
نہیں دیکھیے, یہ جو ویمن پرابلم ود جینڈر بیسڈ پرابلم جو ہے, اس کے بارے میں میرا یہ خیال ہے کہ اٹ ہیز مور ٹو ڈو ود آور یو نو سوشل کنڈیشننگ دین اینی لیگل سسٹم. ایک چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ قوانین ایٹیٹیوڈز نہیں چینج کرتے جی. اگر آپ کی سوسائٹی میں ایٹیٹیوڈ ڈس ریسپیکٹ فل ہے خواتین کے بارے میں, تو آپ جتنے مرضی اچھے لاز بنا دیں, آج تک یعنی آفٹر 70 واٹ 100 ایئرس ہم یہ نہیں کر سکے کہ سوسائٹی میں جو کیلیفورنیا جیسی سوسائٹی ہے اس کے اندر ہم ایکول رائٹس دے دیں ایٹیٹیوڈس کے حوالے سے. ویسے دے دیے ہم نے, لا دے رہے آپ دے دیں, لیکن دیکھیے کس طرح سے پولیس والوں نے کالوں کے ساتھ معاملہ کیا یا یہ معاملہ کیا, دیٹ از ویری ٹریجک. ایٹیٹیوڈز نہیں چینج ہوتے, لا ایٹیٹیوڈز نہیں چینج کرتا. اگر آپ نے ایٹیٹیوڈ چینج کرنے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایجوکیشن دینی پڑے گی. جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ کوئی بھی اٹھ کے یہ کہہ دے کہ یہ اگینسٹ اسلام ہے, تو نہیں, اس میں ہم نے کچھ غلط قوانین بنائے ہیں. یعنی یہ پاکستان میں یہ بات کہ شریعت کو ڈیسائیڈ کیا جائے گا اکارڈ بائی سیٹ آف پیپل, تو یہ تو تھیوکریسی کی طرف لے کے جا رہے نا ہم, بجائے اس کے کہ ہم تھیوکریسی بنائیں, ہم ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہیں, اس کے اندر پبلک یہ ڈیسائیڈ کرے گی کیا چیز ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے اور اس کے مطابق فیصلہ کرے گی. البتہ آپ ویریس علماء کو بلا کر ان کی انٹرپریٹیشن پوچھ سکتے ہیں. مجھے یہ یقین ہے کہ اگر ہم مسلمان ہوں گے تو ہم کوئی بھی فیصلہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف نہیں کرنا پسند کریں گے, لیکن وائی ڈو وی نیڈ سمبڈی ٹو ٹیل اس کہ یہ جو رائے ہے اس میں یہ چیز اگینسٹ اسلام ہے, اس کو چینج کیا جائے. آئی تھنک دیٹ از اے رانگ ڈیسیجن دیٹ وی ہیو ٹیکن, اینڈ وی نیڈ ٹو یو نو ریویو دیٹ ڈیسیجن.
ٹھیک ہے بھائی صاحب, شکریہ. آئی ڈونٹ ہیو مچ ہوپ ان پاکستان فار آور ویمن ایٹ لیسٹ. تھینک یو.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی
پروفیسر صاحب, یہ آپ نے بتایا تھا سٹیج 3 کے بارے میں کہ اس میں ایک شخص خود ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ یہ پرنسپلز ہیں تو اس کے مطابق وہ اپنا عمل کرتا ہے, پھر اسے فرق نہیں پڑتا کیا یا کسی کے خلاف بھی جا رہا ہے. تو آپ دیکھیں آج کل اگر خاص کر پیرنٹس کو اپنے یوتھ سے, اپنے کڈس سے اور ینگ جنریشن سے یہ پرابلم رہتی ہے کہ وہ خود اپنے جو پرسپیکٹیو ہے ان کے اکارڈنگ چلتے ہیں, جس کو وہ صحیح سمجھتے ہیں اسے پکڑ لیتے ہیں, اس کے بعد وہ ترجیح نہیں دیتے اپنے بڑوں کو یا اپنے اساتذہ کرام کو کہ وہ ان کو سمجھائے بجائے, وہ بس خود آبزرو کرتے ہیں اور ان کو جو ٹھیک لگتا ہے وہ اس پہ چل پڑتے ہیں. تو آیا ہم ان کے بارے میں یہ کہیں گے کہ وہ ڈائریکٹ پچھلے دو اسٹیجز سے کو اسکپ کر کے سیدھا تیسرے پہ پہنچے ہوئے ہیں, اور اگر ہم ان کی امپروومنٹ کریں تو بہت جلدی تھوڑے سے ہی محنت کے ساتھ وہ سیدھا اسٹیج 4 پہ پہنچ جائیں گے؟ یہ ہے. اور ایک دو اور بھی ہیں, اگر آپ اجازت دیں گے تو میں وہ بھی کر لوں گی بعد میں.
جی ٹھیک ہے جی. یہ جو اسٹیج ہے نا جی, جو میں جس کی آپ ذکر فرما رہی ہیں, یہ بیسیکلی یہ گروپ جس کا میں نے سٹیج نمبر 2 کا ہے, یہ بیسیکلی وہ ہے جدھر کے جو اتھارٹی ہے اب انڈیویجول کے لیے وہ اس بڑے گروپ سے آ رہی ہے جو پیئر گروپ ہے. یہ پیئر گروپ جو بھی آپ کے لیے امپورٹنٹ ہوگا وہ اصل میں بن جائے گا. ہوتا کیا ہے کہ یہ ویلیوز, اصل میں یہ نہیں ہو رہا کہ یہ بچے جو ہیں جن کے بارے میں آپ نے ذکر فرمایا یہ کچھ اصول ہیں جس کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں, بلکہ یہ اپنے پیئرز کے سپورٹ میں اور پیئرز کے پریشر میں یہ سب کچھ کرتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں وہ انفارچونیٹلی ماں باپ کے کیونکہ خلاف ہے تو وہ ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے. فیصلہ جس وقت پرنسپل کی بیسس پہ کیا جائے گا تو اصل میں پیئرز کی بھی یہ حیثیت ختم ہونی شروع ہو جائے گی. یہ اس وقت جو ہو رہا ہے وہ یہ نہیں ہو رہا. آئی ہوپ آئی ہیو آنسرڈ یور کوسچن. جی
جی بالکل.
आप अगला सवाल कर लीजिए।
जी, आपने बताया था प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ कंपैशन, और तीसरा एक बताया था जो मैं टाइप करना भूल गई थी, लिखना भूल गई थी।
अच्छा,
वो आप बता देंगे?
मैं अब मुझे याद नहीं है, ये तीन प्रिंसिपल नहीं है जी, प्रिंसिपल्स की एक लिस्ट है जो मैं इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्राम में किसी में आपके साथ पूरी शेयर करूंगा। मेरा ख्याल है कि इट विल बी ये एक प्रोग्राम, एक सेशन हमारा इसी टॉपिक पर नेक्स्ट होना है, जिसमें कि मैंने ये गुजारिश की कि मैं अपने फेथ के हवाले से, फेथ की अंडरस्टैंडिंग के हवाले से आपके साथ शेयर करूंगा। इसके बाद एक और है सेशन जो कि विच आई क्लियरली हैव इन माइंड, और इसके बाद जो तीसरा टॉपिक है वो असल में प्रिंसिपल्स ही का टॉपिक होगा, और उसमें मैंने अभी जो तीन का अगर जिक्र किया तो वो सिर्फ मिसाल के तौर पर, आप प्रॉब्ली प्रिंसिपल ऑफ काइंडनेस का जिक्र किया है, प्रिंसिपल ऑफ देयर आर मेनी ऑफ देम, इंटेग्रिटी का प्रिंसिपल है, देयर आर मेनी ऑफ देम। अभी आप सोचने बैठते हो तो अल्फाज ही नहीं बन रहे होते तो क्या कहें, लेकिन इंशाल्लाह ये डिटेल में देर बैठ आएंगे जी इंशाल्लाह।
जी, आपने कहा कि जी दो सवाल और हैं। आपने कहा कि मोस्टली लोग दूसरे स्टेज पे होते हैं तीसरे पे, और दूसरे समटाइम्स अगर पहुंच भी जाते हैं तीसरे पे तो दूसरे और तीसरे के दरमियान ही फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं, तो उनके कुछ डिसीजंस पहले दूसरे के अकॉर्डिंग होते हैं और कुछ तीसरे के। तो मैं अगर अपना तजिया करूँ तो मेरे साथ ऐसे हो रहा है क्योंकि हम एजुकेट कर रहे हैं खुद को इस्लामिक टीचिंग्स के साथ, तो अगर से तब्दीली आ रही है लेकिन अभी भी बहुत जगहों पे मैं दूसरे स्टेज के काम कर लेती हूँ। अंदर से इंटरेस्ट तो है कि मुझे तीसरे पे जाना है लेकिन अमली मैदान में ऐसा नहीं कर पाती आप मुझे, लेकिन मैं जाना तीसरे पे चाहती हूँ, तो कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिनको मैं इम्प्लीमेंट करूंगी ताकि मैं ये इंटरनली अपने ग्रोथ कर सकूं। जब एक
बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी, दिस इज अ वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरी, मैं इसके बारे में ये अर्ज करूंगा कि ये असल में कोई टेक्निकल ये वो नहीं होता। जब एक दफा आपके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है कि मैंने प्रिंसिपल सेंटर्ड जिंदगी गुजारनी है, लेकिन आप रुकावट महसूस कर रहे होते हैं, तो ये बेसिकली एक अडेप्टिव सिचुएशन है। अडेप्टिव सिचुएशन का मतलब ये होता है कि आपके पास नॉलेज तो है, टेक्निकली आपको पता है कि क्या होना चाहिए, लेकिन आप कर नहीं पा रहे होते, और उसमें कुछ हमारी अंदर की अजम्पशंस मौजूद होती हैं जी, जो हमें रुकावट डाल रही होती हैं। जब हम उन अजम्पशंस को ओवरकम करना शुरू कर देते हैं, हमारी गलती क्या है ये देखिए, हमें जो करना चाहिए था हम कोशिश करते हैं कि वो कर दें, अपने आप को फोर्स करके वो कर डालें कि जो ठीक था, लेकिन इससे नहीं होगा। ये आमतौर पर न्यू ईयर रेजोल्यूशन आपने सुना होगा कि 1 जनवरी को हम ये कहते हैं कि कोई फैसला करो, कोई अच्छा काम जो इस साल आपने शुरू करना है, और तकरीबन 6 जनवरी तक हम इस फैसले पर कायम रहते हैं, और 7 जनवरी को भूल चुके होते हैं और फिर फरामोश कर देते हैं, और नहीं ये नहीं हो, ये नहीं हो सकता। ये जो एस्पेक्ट है कि हमने इस तरह की सिचुएशन में जो आपने फरमाई ओवरकम कैसे करना है, इसके लिए एक पूरी एक्सरसाइज करते हैं जी हम, एक रेजिस्टेंस टू चेंज है हमारे अपने अंदर, ठीक है जी, वो जो रेजिस्टेंस है उसको ओवरकम कैसे करना है, इस पर मैं एक, यानी ये अनफॉर्चुनेटली इतना इतना टेक्निकल सा टॉपिक है कि मैं अगर यहाँ पे बयान कर लूंगा तो बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैं इसकी एक एक्सरसाइज करता हूँ जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम होती है जी, इसके लिए कोई 8-10 सेशंस चाहिए, लेकिन वो हो जाती है। यानी वंस यू अंडरस्टैंड कि मेरे अंदर कुछ अजम्पशंस चल रही हैं और वो अजम्पशंस आपके लिए फैक्ट का दर्जा रखती हैं, ठीक है जी, और वो जैसे ही ओवरकम होती हैं, जैसे ही आप उसको ओवरकम कर लेते हैं, तो अब वो ऑटोमेटिकली आपका रवैया जो है वो चेंज होने लग पड़ जाता है। ये एक एक्सरसाइज है जिसका मैं कोशिश करूंगा कि किसी वक्त तारुफ कराऊं, ताकि जो लोग खुद कर सकते हैं वो जरूर करें, मेरी हेल्प चाहिए होगी तो मैं भी इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा जी, बट इट्स इज अ स्लाइटली टेक्निकल टॉपिक, अगर आप माफ कीजिएगा ये मैं इस वक्त बयान करूँ, अगर डिटेल में तो ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी उससे जी। फाबिया, अगर मैंने आपका नाम ठीक लिया है, आपके बात का जवाब मैं दे पाया हूँ जी?
जी बिल्कुल, आपने सही जवाब दे दिया, बिल्कुल मुझे समझ आ गई है, और मैं ये करना भी चाहूंगी क्योंकि मैं करना चाहती हूँ
इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
और एक आखिरी चीज है अगर आप इजाजत दें।
जी जी,
ये आपने कहा था कि इंटरनली हमारे अंदर एक چیز موجود ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیعت کی ہوئی، لیکن ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ آیا ہم کس طرح اس کو انوائرمنٹ دے رہے ہیں وہ چیز انہینس ہو، یا بعض اوقات برائی کی کوئی چیز پہلے سے موجود ہوتی ہے. ہر شخص کے لیے الگ الگ امتحانات ہوتے ہیں، تو وہ جیسا اس کو انوائرمنٹ ملتا ہے وہ آگے بڑھنا شروع کر دیتی ہے. تو ہاں، لیکن ہم سمجھ نہیں پا رہے ہوتے بعض اوقات چھوٹے بچوں کو کہ ان کے اندر کون سی صلاحیت ہے تاکہ ہم ویسا ماحول دیں. تو کوئی ایسی طریقے آپ بتا سکتے ہیں کہ ہم پرسنالٹی سمجھ سکیں بچوں کی، تاکہ ہم پھر اسی کے مطابق ان کے
ساتھ ماحول دیں؟ جتنے بھی پرسنالٹی کے ٹیسٹ ہیں نا جی، آل دوز ٹیسٹ جس کے بارے میں آپ یہ سمجھیں کہ یو نو کو پرسنالٹی کو ڈٹرمن کرنے کے کہ یہ بچہ کیسا ہے، اس کے یعنی کیا اس کے اندر چیزیں، جو 16 پرسنالٹیز کا انہوں نے بنایا ہوا ہے، وہ بیسیکلی تب ہوتی ہے کہ جس وقت انسان جو ہے وہ اپنی بات پہ غور کرنے، سوچنے، سمجھنے، کمیونیکیٹ کرنے قابل ہو جاتا ہے. بچپن سے نہیں ہم کر سکتے یہ. ہم جو چیز بچوں کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کا ایکسپوجر زیادہ سے زیادہ وسیع کریں، یعنی ان کو مختلف مواقع دے، وہ میوزک کا بھی موقع دے، ان کو ارتھمیٹک کا بھی ہم اس کے ساتھ شیئر کریں، مختلف پزلز میں ڈالیں، پریکٹیکل لائف سے ریلیٹڈ 1 2 3 کے نہیں، یا لینگویج پڑھنے کے حوالے سے، بات چیت کے حوالے سے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اصل میں آپ ایک ایکسپوجر بڑے اسکیل پہ اگر دیں گے تو اس کے نتیجے میں بچے کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے گی. اگر ایک بچہ یہ جانتا ہی نہیں ہے کہ کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں تو اس کے ایکسپوجر چونکہ اتنا لمیٹڈ ہے تو اب وہ ہی کین ناٹ، آپ بھی نہیں ڈٹرمن کر سکتے، وہ بھی نہیں ڈٹرمن کر سکتا کہ اس کا شوق کیا ہے. تو ایکسپوجر زیادہ سے زیادہ دیں، اپنا شوق وہ ڈٹرمن کر لے گا، دیکھیں وہ اپنی مرضی سے کس چیز میں زیادہ ٹائم لگاتا ہے، اس سے ریلیٹڈ چیزیں اور جمع کرنے کی کوشش کریں، یہ اس کی اچھی تربیت ہو سکتی ہے اس کے نتیجے میں جی. لیکن یہ ایک پورا ڈیٹیل ٹاپک ہے جی. میں وہ جو ہے نا جی بات اس چیز کا بڑا قائل ہوں کہ ہماری جو کوشش ہوتی ہے بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کی وہ ان کو ایجوکیشن سے دور کر دیتی ہے. یعنی جتنا وہ ایفرٹ لیسلی ایجوکیٹ ہونا چاہیں اتنا ہی اچھا ہوگا ان کے لیے بھی، اور اتنا ہی وہ اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کر پائیں گے. جتنا آپ زور لگائیں گے کہ اس وقت یہ سیکھنا چاہیے اس کو، اتنا ہی زیادہ آپ آرٹیفیشلی ان کے اندر وہ چیز پیدا کر رہے ہیں جو اصل میں وہ نہیں چاہتے کرنا، ان کی زندگی سے وہ ریلیٹ بھی نہیں کرتی ہے. ایجوکیشن اصل میں تب کام آتی ہے جب وہ میری زندگی سے ریلیٹ بھی کرے.